देखें, जितना हमारी ज़िंदगी में कंफर्ट ऐड होगी, कुछ कम ज़रूर होगा। वो ढूंढना होगा कि क्या कम हुआ। ताल्लुक़ से मैं क्या मुराद ले रहा हूँ? ताल्लुक़ का मतलब ये है कि मैं उनका एतमाद हासिल कर सकने के काबिल हो जाऊँ और उन पर एतमाद करने के काबिल हो जाऊँ। ताल्लुक़ का एक मतलब ये है। घर और मकान एक चीज़ नहीं होती। मकान बनाने की मेहनत कुछ और चीज़ है, घर बनाने की मेहनत कुछ और चीज़ है। ताल्लुक़दारी और दीनदारी, इन दोनों को हमने अलग अलग समझा हुआ है। हमें लगता है कि ताल्लुकदारी कुछ और चीज़ होती है और दीनदारी कुछ और चीज़ होती है। اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا۔ رب کریم ہمیں وہ علم عطا فرمائیے جو واقعی ہمارے لیے مفید ہے، اور پھر ہمیں اس عمل کی توفیق دیجئے جو آپ کو پسند آ جائے، اور پھر اتنا اچھا علم ملنے کے بعد اور اتنا اچھا عمل کر لینے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائیے، ہمیں اپنے سے ڈرنے والا ہی رکھیے۔ دو تین باتیں بس میں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک چیز جو سوچنے ہم سب کو سوچنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں سے جس قسم کی توقعات ہم لگا لیتے ہیں، اس کی بیسس کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ کسی اصول کی بنیاد پر ہم اپنے بچوں سے توقعات وابستہ کرتے ہیں، یا ہم ان کے لیے جو کچھ سوچتے ہیں اور جو کچھ منصوبے بناتے ہیں اس کے پیچھے کتنی بڑی علمیت اس ایکسپیکٹیشن کے پیچھے موجود ہوتی ہے جو ہم اپنے بچوں سے وابستہ کرتے ہیں، یا ہم اپنے بچوں کے لیے جو پروگرام سیٹ کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ بہت سے ہمارے معاشرے میں بچوں سے جو ایکسپیکٹیشنز بہت سے لوگوں نے لگائیں، وہ ایکسپیکٹیشنز ہیں جو خود بخود بغیر سوچے سمجھے ہم لگاتے چلے گئے۔ ہم جب ہم نے آنکھ کھولی تو ہم ایک نظام کے اندر جکڑے ہوئے تھے، اور اس نظام میں بچوں سے ایک خاص قسم کی ایکسپیکٹیشنز تھیں۔ بچوں سے کچھ کام کروانے تھے، کچھ رولز پہلے سے سیٹ ہوئے ہوئے تھے، تو زیادہ سوچ بچار کا موقع نہیں ملا اور ہم اس راستے پہ چلنے لگے، اور وہ پھر چلتے چلے گئے۔ اور یعنی یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ میں اپنے بچوں سے جو چاہتا ہوں یا اپنے بچوں کے لیے جو سوچتا ہوں اس کی بیسس کیا ہے۔ اور میں اکثر یہ سوچتا ہوں، یعنی ایک اللہ کا شکر اس بات پہ ہمیں کرنا چاہیے کہ یہ نظام جو تعلیمی نظام ہے جس میں ہمارے بچے جو تربیہ کے مقاصد پورے نہیں کرتا، اللہ کا شکر یہ ہے کہ یہ نظام مسلمانوں نے ایجاد نہیں کیا، اور یہ نظام مسلمانوں نے شعوری طور پر قبول نہیں کیا۔ بس یہ نظام ایسا ہے کہ ہم اس کے اندر لاشعوری طور پر، اگر ہم نے یہ ایجاد کیا ہوتا تو یہ گناہ کتنا زیادہ ہوتا، کتنا بڑا ہوتا، اور اگر ہم شعوری طور پر اس کو قبول کیے ہوئے ہوتے تو بھی یہ نفاق کی کتنی بڑی صورت ہوتی۔ تو اللہ کا بہت احسان ہے کہ یہ نظام نہ ہم نے بنایا ہے نہ شعوری طور پر قبول کیا ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے۔ یعنی ہمارے اوپر اگر کوئی چارج شیٹ لگ سکتی ہے تو وہ یہ لگ سکتی ہے کہ بھائی، جب تم نے آنکھ کھولی تو تم نے یہ غور کیوں نہیں کیا کہ تم کس قسم کی زندگی گزار رہے ہو، تم کس قسم کے نظام میں جکڑے ہوئے ہو، اور جو کچھ بھی تمہارے آس پاس ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اور تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے، اس پہ تم نے کوسچن کیوں نہیں کیا؟ افلا تعقلون افلا تدبرون، یہ مطلب یہ سوال ہم سے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے جو ہم اپنے آپ سے کریں، اور ہمیں اس کے سوچنے کی اللہ توفیق دے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جس سسٹم میں حکم کو ہم فالو کر رہے ہیں، ہمیں بڑی کامیابی سے، ہمارا میں سمجھتا ہوں مسلم امہ کو ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس نے اپنے تصور کامیابی کو اپنے کلمے سے الائن کرنے کی ذمہ داری نبھانی ہے۔ ہمارا جو تصور کامیابی ہے وہ اللہ کرے کہ ٹھیک ہو جائے۔ ہمارا تصور کامیابی، دیکھیے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ اور کوالٹی آف لائف ایک چیز نہیں ہوتی، یہ میں اکثر اس بات پہ اس کا اظہار کرتا ہوں۔ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم زیادہ کما سکیں، زیادہ خرید سکیں، اور آسائشیں اور کمفرٹ اور لگژریز جمع کر سکیں، اور اپنی زندگی کو آرام دہ بنا سکیں، اپنے گھروں میں بہت سا سامان جمع کر سکیں۔ تو یہ ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ، اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ تو اس وقت جو تصور کامیابی بہت سے ہمارے مسلم امہ میں مسلمانوں نے جس کو بلائنڈلی ایکسیپٹ کر لیا या फॉलो कर लिया। अल्लाह का शुक्र है कि लाशऊरी तौर पर फॉलो किया है, इस पे शुक्र अदा करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि शऊरी तौर पे शायद फॉलो हो रहा है, ये बस आँख खोली तो बस भाग रहे थे इसी निज़ाम के अंदर। तो वो जो तसव्वुर कामयाबी था वो गलत रह जाने से बड़े नुकसान हुए, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को चेस करना ये एक तसव्वुर कामयाबी का पार्ट बन गया। और होना क्या चाहिए, हम मैं अक्सर कहता हूँ कि क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक चीज़ नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ ये है कि खुश रह सकने और खुश रख सकने की काबिलियत हमारी ज़िंदा रहे, हम खुश रह सकें और खुश रख सकें, हम एक बामानी ज़िंदगी का तजर्बा कर सकें, हम मुतमईन हो सकें, तो ये है क्वालिटी ऑफ लाइफ। और हम बहुत सारी चीज़ें जमा कर लें और हम बहुत ज़बरदस्त किस्म का मकान बना लें, ये है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और बहुत अपनी आसाइशें बढ़ाते चले जाएं, गाड़ी हर कुछ अरसे के बाद बेहतर करते चले जाएं, घर में आसाइशें उनमें इजाफ़ा करते चले जाएं, तो ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कामयाबी समझने से जो ज़िंदगी पैदा होती है और जो जद्दोजहद शुरू होती है वो एक और किस्म की होती है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ को सामने रखने के नतीजे में जो ज़िंदगी मुमकिन होती है, जो जद्दोजहद पैदा होती है, वो बहुत मुख्तलिफ होती है। और हमारा मुसलमानों का तसव्वुर कामयाबी क्या होना चाहिए, तो हमारा सबसे बड़ा तसव्वुर कामयाबी जो हमारे अकीदे का हिस्सा है, अल्लाह हमें हकीकी फलाह नसीब फरमाए, हमें हमेशा ज़िंदा रहने वाली ज़िंदगी में अल्लाह हम सबको कामयाब करे। तो ये तो उखरवी कामयाबी, सबसे बड़ा कह लीजिए कि कामयाबी का हाइएस्ट विज़न जो है वो हमारा ये हो सकता है और होना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो हमारी कामयाबी का तसव्वुर होना चाहिए वो ये है कि हम अपने घरों के अंदर कामयाब हो जाएं, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाए। और घर और मकान एक चीज़ नहीं होती, मकान बनाने की मेहनत कुछ और चीज़ है, घर बनाने की मेहनत कुछ और चीज़ है। मकान बनाने के लिए आपको मिलियंस ऑफ रुपीस चाहिए या जितने भी पैसे आप उसके लिए पैसा चाहिए, घर बनाना कुछ और चीज़ है, वो एतमाद और मोहब्बत और बेलौसी और ताल्लुक़ की खूबसूरती से पैदा होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उनकी उनकी एक एक हदीस का मफहूम है कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर में अच्छा है। तो मुसलमानों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि कामयाब इंसान वो है जो जिसके वालदेन, जिसके बहन भाई, जिसकी बीवी या शौहर और जिसके बच्चे उससे मोहब्बत करते हैं, उस पर एतमाद करते हैं और उसका एतमाद हासिल करते हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये कामयाबी का वो स्टैंडर्ड है जो हमारे ईमानी तनाजुर में जिसको हमें अपने सामने रखना चाहिए। लेकिन हुआ ये है कि हम अपनी ज़िंदगी के लिए किस तरह की जद्दोजहद करें, किस तरह के रास्ते पे चलें। मसला ये हुआ कि ये वो जो रास्ता था हमारी ज़िंदगी का वो हमारे कलमे के साथ अलाइन नहीं था, और हम लाशऊरी तौर पर एक ऐसे रास्ते पे भाग रहे थे जो हमारा रास्ता नहीं था। अल्लाह का शुक्र है कि लाशऊरी तौर पे भाग रहे थे, अगर शऊरी तौर पर भागते तो ये गुनाह बहुत बड़ा होता, और अगर ये रास्ता हमने ही ईजाद किया होता तो फिर तो ये बहुत ही बड़ा गुनाह होता। अल्लाह का शुक्र है ये निज़ाम और ये रास्ता हमारा पैदा किया हुआ नहीं है, और हम शऊरी तौर पर इस रास्ते पर नहीं चल रहे, लाशऊरी तौर पर इस पर भागे जा रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि सब भाग रहे हैं, यानी अगर हम लोगों को किसी को रोकें और कहें भाई तुम इस रास्ते पर क्यों भाग रहे हो, तो वो कहेगा इसलिए कि सब भाग रहे हैं। तो तुम रुक क्यों नहीं जाते और रुक के सोचते क्यों नहीं हो कि तुम कहाँ भागे जा रहे हो, तो वो कहेगा कि अगर मैं रुक जाऊँगा तो मैं पीछे रह जाऊँगा, तो पीछे रह जाने के खौफ से मैं रुकता नहीं हूँ और सोचता नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं रुकूँगा तो मैं पीछे रह जाऊँगा, तो मैं पीछे ना रह जाऊँ इसलिए मैं भागे जा रहा हूँ। लेकिन तुम भाग के जाओगे कहाँ, आप कहीं नहीं, जहाँ ये सब जा रहे हैं वहाँ मैं जाऊँगा। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है, मतलब मैं कभी, अल्लाह हमें माफ़ करे, 7 अरब या 8 अरब इंसान भागे जा रहे हैं आग के कुएं की तरफ, और इसमें अलमिया ये है कि वो 1.5 अरब लोग भी उसी कुएं की तरफ भागे जा रहे हैं। वो आग का एक कुआं है जिसमें, यानी अगर 7-8 अरब इंसान उसमें भागे जा रहे हैं, तो इसमें अलमिये की बात यह है कि 1.5 अरब लोग वो हैं जो अल्लाह को अपना इलाह मानते हैं, जो यानी जिनका ईमानी तनाजुर एक उन्हें इस कुएं की तरफ जाने के लिए नहीं बल्कि इस कुएं से बचने के लिए मुतनब्बे करता है, लेकिन वो भी लाशऊरी तौर पर इस तरफ भागे जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो मैं ये समझता हूँ, अल्लाह करे कि हम सब का तसव्वुर कामयाबी ठीक हो जाए, हम सब अपनी ज़िंदगी को अपने कलमे से पूरे तौर पर अलाइन करने में कामयाब हो जाएं, हम अपने बच्चों से जिस किस्म की एक्सपेक्टेशंस हमें करनी चाहिए, रखनी चाहिए, या जिस किस्म का विज़न उनके लिए बनाना चाहिए वो वाकई एक वर्थ वाइल विज़न हो, और उसके पीछे कोई इल्मियत हो कि कि हम अपने बच्चों के लिए क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, कि उसके पीछे कोई इल्मियत हो, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। मैं महसूस करता हूँ कि इसके ना हो सकने की वजह से ना, देखिए हमारी एजुकेशन हमें उन रोल्स के लिए तैयार करने की कोशिश करती है जो हमें घर से बाहर परफॉर्म करने, यानी हमारी एजुकेशन हमें उन रोल्स के लिए तैयार करने की कोशिश करती है जो हमें घर से बाहर परफॉर्म करने, और जो घर के अंदर जो रोल्स हमें परफॉर्म करने, यानी वालिद साहब की खिदमत कैसे करनी है। मैं आपको बताऊं कि अब एक ज़यीफ़ इंसान की नफ्सियाती मजबूरियां क्या होती हैं, ये आज के तालीम याफ्ता आदमी को इस बात की क्लैरिटी नहीं है। और अगर मैं ये सवाल रखूं कि क्या ये बात जानना और समझना कि एक ज़यीफ़ इंसान की नफ्सियाती मजबूरियां क्या होती हैं और किस किस्म का अलाउंस उसको देना उसका हक है, मैं एहसान नहीं करता उसके साथ, एक ज़यीफ़ इंसान के साथ जब मैं उसको एकोमोडेट करता हूँ, तो ये उसका हक है, ये मेरा फ़र्ज़ है। मेरा एक सवाल है कि क्या हमारे माशरे में एक एजुकेटेड इंसान के पास ये शऊर है? मैं आपको बताऊँ, एक एजुकेटेड आदमी के पास ये शऊर नहीं है। उसे एक ज़यीफ़ इंसान से उसी तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं जैसे कि अपने पीयर्स के साथ, अपने कंटेम्प्रेरी किसी अपने अपने कुलीग से जिस तरह की तवक्कुआत होती हैं, बिल्कुल उसी उसी तरह से वो उनसे तवक्कुआत लगाता है। और उनको वो अगर कोई अलाउंस देता है तो एहसान के एहसास के साथ देता है, मतलब वो इस एहसास के साथ नहीं देता कि ये इनकी नफ्सियाती मजबूरियां हैं, मुझे इनको एकोमोडेट करना मुझ पर लाजिम है, ये इनकी नफ्सियाती मजबूरियां, इनकी ज़यीफ़ी की वजह से इनकी नफ्सियाती इस्तताअत महदूद होती जा रही है, तो मुझे इसका एहसास होना चाहिए और मैं ख़ुद भी इस कैफियत में जाने वाला हूँ। मैं जब छोटा था तो मेरी कुछ नफ्सियाती मजबूरियाँ थीं या डिमांड्स थीं जिनको उन लोगों ने पूरा किया जो मुझसे बड़े थे, और अब जब ज़यीफ़ हो जाता है इंसान तो मुझे उसके साथ इसी तरह अपना रिश्ता निभाना है, तो ये कोई एहसान नहीं कर रहा मैं उनके साथ, ये एक ये माशरा इसी तरह चलता है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ जो ताल्लुक़ निभाने के जो आदाब हैं और ताल्लुक़ निभाने का जो शऊर है और ताल्लुक़ निभाने का जो मिजाज है, ये हमारे तालीम याफ्ता आदमी भी इससे बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा, अल्लाह हमें माफ़ करे, ये मसला है। और जैसे मैंने कहा कि हमारी तालीम हमें घर से बाहर वाले रोल्स के लिए तैयार करती है। आप मैं कभी कभी कहता हूँ कि अगर आप हरम के दरवाजे पे भी खड़े हो जाएं और जो लोग अभी हज या उमरा करके वापस निकल रहे हैं और उनसे पूछें कि ये बताओ, एक सवाल करें सबसे, ये बताओ तुम्हारे ख्याल में इस वक्त दुनिया का सबसे कामयाब आदमी कौन है, तो उनका क्या जवाब होगा? आप किसी मजहबी या किसी तालीमी इदारे के दरवाजे पर खड़े हो जाएं जो लोग बाहर निकल रहे हैं और उनको रोकें और उनसे कहें आपके ख्याल में इस वक्त दुनिया का सबसे कामयाब आदमी कौन होगा, तो अल्लाह हमें इस बात पे माफ़ करे कि हमारे जहनों में कामयाब आदमी का जो तसव्वुर है वो ठीक ना होने की वजह से, मतलब हम किस बेसिस पे किस आदमी को कामयाब समझते हैं, हमारे बच्चे किस बेसिस पे किस इंसान को कामयाब समझते हैं, और ये अल्लाह करे कि ये सही हो जाए, अल्लाह करे कि ये सही हो जाए, क्योंकि इसके सही ना हो सकने की वजह से पूरी मुस्लिम उम्मा को जिन मसाइल का सामना है और जिस गुमराही की तरफ लाशऊरी तौर पर हम भागे जा रहे हैं, उससे निकलने की ये सूरत है कि हमारा तसव्वुर कामयाबी ठीक हो और हम इस बात पे सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। और अब मैं ये बात करूँगा ताल्लुक़ के हवाले से। देखिए ताल्लुक़ के हवाले से सबसे बुनियादी बात मैं ये चाहूँगा कि हमें समझ में आए कि देखिए नेकी और खैर और भलाई की तरफ उकसाने और आमादा करने या आमादा रखने या चलाने का जो पहला इंतज़ाम रब्बे करीम ने हमारे अंदर रखा है उसका नाम है फितरत। यानी हर इंसान में नेकी, खैर और अच्छाई, उसको इख्तियार करने, उस पर चलने का जो पहला अरेंजमेंट रखा है अल्लाह ताला ने, उसका नाम है फितरत। और ये अरेंजमेंट इतना स्ट्रांग होता है कि वो इंसान जो अल्लाह को नहीं भी मानता उसके अंदर भी खैर पर चलने की एक उमंग बहरहाल कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, और ये बड़ी गैर मामूली चीज़ है, ये फितरत है। और ये खैर पे, किसी इंसान को खैर और नेकी पे चलाने और बुराई से बचाने के पहले इंतज़ाम का नाम है फितरत। और फिर किसी इंसान को खैर पर चलाने और बुराई से बचाने के हतमी और मुकम्मल और फाइनल अरेंजमेंट या इंतज़ाम का नाम है आसमानी हिदायत। तो फितरत और हिदायत, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों की अल्लाह का एक एहसान ये है कि उसने हमारी फितरत ऐसी बनाई कि हमें अच्छाई हमारी हमारे अंदर अच्छाई और खैर को पसंद करने का एक पोटेंशियल रब्बे करीम ने हमारे अंदर रखा है। और यानी वो इंसान जिसको हिदायत नहीं भी मिली, उसके अंदर भी एक रहम का मादा है, उसके अंदर भी एक बेसिक लेवल पे इखलास है, उसके अंदर भी एक बहुत से ऐसी उसके फितरी उसकी फितरत में ऐसे औसाफ हैं यानी वो जो उसको सही रास्ते पे रखते हैं और फिर हिदायत उसे मिलती है तो वो मामला मुकम्मल हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जो फितरत के पोटेंशियल्स हैं उनको नर्चर करना, उनका तहफ्फुज़ करना और उनको हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड्स पर पहुंचाना उसकी उसकी जिम्मेदारी हिदायत लेती है। हिदायत उसको एक बड़ा ही एक नई रिफ़तें उसको अदा कर देती है। हमारी हमारी फितरत का जो बहुत ही कीमती जौहर है या हम उसे पोटेंशियल कहें, उसका नाम है ताल्लुक़। तो ताल्लुक़ क्यों ज़रूरी है? ताल्लुक़ जो है वो हम नफ्सियाती सेहत पर फायज़ नहीं हो सकते ताल्लुक़ के बगैर। गहरा ताल्लुक़ हमारी नफ्सियाती सेहत के लिए ज़रूरी है। गहरा ताल्लुक़ हमारी नफ्सियाती इस्तताअत को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। हमारी अखलाकी कह लीजिए हम अखलाक और तहज़ीब के कोई माने नहीं होंगे अगर ताल्लुक़ ना हो। मतलब अगर यानी अल्लाह के लिए तो मुमकिन था कि जितने इंसान पैदा किए उतने आइलैंड्स पैदा कर देता और हर इंसान एक आइलैंड में रहता, तो ये मुमकिन था ना? 7 अरब आइलैंड्स होते दुनिया में और हर आइलैंड पे एक आदमी रहता, वो कहता भाई आपका अपना एक आइलैंड है, हर आदमी का एक आइलैंड है। जदीद दुनिया ने क्या किया है कि इंसानों को इसी दुनिया में आइलैंड्स या अपनी एक अपने खोल में उसको ले जाने की कोशिश की है कि भाई लिव क्रिएट योर ओन आइलैंड एंड लिव एज इफ़ यू आर लिविंग इन एन आइलैंड। ये हमारे साथ हमारी ओरिएंटेशन इस तरह की है क्योंकि वो जो निज़ाम था वो फितरी नहीं था, वो एक मस्नूई निज़ाम था। इसलिए उसने हमें हमें हमारी जो ओरिएंटेशन है हमें डिसओरिएंट किया, यानी हमारे हमें अपनी फितरत को फॉलो करने की बजाय एक दूसरी सिमत में हमें हम गए। ये यानी जो इंडिविजुअलिज्म है वो हमें आइलैंड्स का सीकर बना रहा है। वो यानी वो चाहता है कि मेरा एक आइलैंड हो और मैं इस दुनिया में ऐसे रहूं जैसे कि मैं एक आइलैंड में रहता हूं और बस मैं हूं और मेरी दुनिया हो और बस काफ़ी है। लेकिन तहजीब जिसे हम कहते हैं, तहजीब पैदा नहीं हो सकती ताल्लुक़ के बगैर, अखलाक मुमकिन नहीं हो सकते ताल्लुक़ के बगैर। इंसान की नफ्सियाती शिफायाबी और नफ्सियाती इस्तताअत ये मुतय्यन होती है ताल्लुक़ के नतीजे में। आप मुझे बताइए वो इंसान जो ज़िंदगी में कभी बोला ना हो, जिसने बात ना की हो, हम ये कहेंगे ना कि उसने यानी उसने अपने शऊर को जाना नहीं है ना, मतलब जिसने बोला ही नहीं है। मतलब या अगर हम ये कहें कि वो इंसान यानी इंसान ठीक है दुनिया में आता है लेकिन उसके बाद अब वो लिबास ज़ेब तन करता है, तो लिबास ज़ेब तन करता है तो लिबास उसकी शख्सियत की एक ज़रूरत होती है ना। मतलब बेलिबास इंसान को हम नामुकम्मल ही शुमार करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ताल्लुक़ के बग़ैर इंसान कि जो अखलाकी उसका अखलाकी वजूद है, उसका नफ्सियाती वजूद है, और उसका तहज़ीबी वजूद है, वो नामुकम्मल और अधूरा रहता है। ताल्लुक़ बड़ी ज़रूरी और कीमती चीज़ है। तो इस वक्त हुआ यह है कि हमारी लाशऊरी तौर पर हमने जिस ट्रैक पे दौड़ना शुरू किया उससे ताल्लुक़ बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ है हमारे। और ताल्लुक़ से मेरी क्या मुराद है? ताल्लुक़ से मेरी मुराद ये नहीं है कि आप रिश्ते में, मतलब बाप बेटे का रिश्ता है, मियाँ बीवी का रिश्ता है, तो रिश्ते में आ जाना और ताल्लुक़ का बन जाना दो अलग चीज़ें हैं। आपके चचा जान हैं, आपके वालिद साहब हैं, आपकी वालदा हैं, ठीक है, वो आपका उनका एक रिश्ता है। लेकिन ताल्लुक़ से मैं क्या मुराद ले रहा हूँ? ताल्लुक़ का मतलब ये है कि मैं उनका एतमाद हासिल कर सकने के काबिल हो जाऊँ और उन पर एतमाद करने के काबिल हो जाऊँ। ताल्लुक़ का एक मतलब ये है। ताल्लुक़ का दूसरा मतलब ये है कि मैं अपनी बात सहूलत से उनसे कहने के काबिल हो जाऊं, वो अपनी बात सहूलत से मुझसे कहने के काबिल हो जाएं। यानी वो अपना प्रॉब्लम, अपनी पर्सनल फीलिंग्स, अपने इश्यूज मुझसे आसानी से, सहूलत से, रिस्पेक्टफुली कह सकें, मैं अपनी बात उनसे आसानी से कह सकूं। एक ताल्लुक़ का मतलब ये है। ताल्लुक़ का एक और मतलब ये है कि मैं उनसे मशवरा कर सकूँ या वो मुझसे मशवरा कर सकें। ताल्लुक़ का एक मतलब ये है। और ताल्लुक़ का एक और मतलब ये है कि हमारी यानी क़ुर्ब की ख्वाहिश पैदा हो, इकट्ठे रहने की ख्वाहिश पैदा हो। हम यानी स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस जो है वो भी ताल्लुक़ के नतीजे में पैदा होती है। फिर ताल्लुक़ जब बढ़ता है और ताल्लुक़ जब बहुत बढ़ जाता है और ताल्लुक़ बढ़कर एक यानी ताल्लुक़ की हाइट क्या है, ताल्लुक़ कमाले ताल्लुक का दर्जा किसे कहेंगे? तो कमाले ताल्लुक ये है कि दूसरे की एक्सपेक्टेशंस मेरे लिए अहम हो जाएं, यानी जिससे मेरा ताल्लुक है उसकी आरजुएं, उसकी ख्वाहिशात, उसकी तवक्कुआत मेरे लिए अहम हो जाएं, मैं उनको अहम जानूं। तो ये ताल्लुक की, मैंने ताल्लुक की एक बहुत मुख्तसर सी डिस्क्रिप्शन दी है कि मैं ताल्लुक से मुराद क्या ले रहा हूँ। ताल्लुक से मुराद सिर्फ रिश्तों में बंधना नहीं है, ताल्लुक से मुराद ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी अर्ज़ की, जिसमें स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस भी है, जिसमें एतमाद, काबिल एतमाद बनना और एतमाद करना, ये काबिल, इसके काबिल हो जाएं, वो मुझ पर एतमाद कर सकें, यानी वो मुझ पर एतमाद कर सकें का मतलब ये है कि वो अपनी अमानत मुझे, चाहे वो राज है चाहे वो कोई चीज़ है, मेरे सुपुर्द करने में उन्हें कोई हेजिटेशन ना हो, यानी वो मुझसे अपनी बात कह सकें, मुझसे अपना मसला कह सकें, मुझसे मशवरा कर सकें, मुझसे सवाल कर सकें, और मेरे साथ रहने की ख्वाहिश उनकी हो। और कमाले ताल्लुक, यानी कमाले ताल्लुक का मतलब ये है कि ताल्लुक की बहुत आइडियल स्टेट यह है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस मेरे लिए अहम हो जाएं। उसने मुझसे कहा तो नहीं था लेकिन मेरे इल्म में यह बात आई कि वो शायद वो ये एक्सपेक्ट करता है, या मैंने खुद ये एसेस करने की कोशिश की कि उसकी मुझसे एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती हैं, और जब ये मेरी समझ में आया कि उसकी मुझसे एक्सपेक्टेशंस कुछ इस किस्म की होंगी, तो मैंने अपने आप को उन एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ढालना शुरू किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अभी इस वक्त हुआ यह है कि ताल्लुक निभाना ये बहुत मुश्किल हो गया है। और देखिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मुमकिन बनाने के लिए हमें अपने वजूद की अंदरूनी तहों पे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बॉस की खुशनूदी के लिए हमें अपने असल को ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्लाइंट का दिल जीतने के लिए और बिज़नेस डील को विन करने के लिए या नेगोशिएशंस करने के लिए हमें अपने एक्चुअल सेल्फ को ठीक करने, बल्कि सीधी सी बात मैं बताऊं, अपने अंदरून को पाकीज़ा करने, अपने नफ्स की तथहीर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्लाइंट का दिल जीतने के लिए, बॉस को राज़ी रखने के लिए, कस्टमर को मुतमईन करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए, बल्कि अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में ये बात कहूँ कि पब्लिक लाइफ में, हमारी ज़िंदगी के दो स्फीयर्स हो सकते हैं ना, एक है हमारी पर्सनल प्राइवेट लाइफ, एक है हमारी पब्लिक लाइफ। दुनिया मेरी वाहवा करे, इस काबिल बनने के लिए आप यकीन मानिए, नफ्स का तज़किया इसके लिए लाजमी चीज़ नहीं है। बड़ी अजीब सी बात मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी, यानी एक आप कुछ स्किल सेट हासिल करके भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन जिस नौइयत के ताल्लुक की मैं बात कर रहा हूँ, यानी ताल्लुक का जो विज़न मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है, जिसमें एतमाद है, जिसमें इखलास है, जिसमें क़ुर्ब का एक की ख्वाहिश है, जिसमें उसकी एक्सपेक्टेशंस, जिसमें मैंने कई उसकी चार पांच बातें मैंने अर्ज़ की, इस लेवल पर अगर मैं पहुँचना चाहता हूँ तो उसका प्री रेक्विज़िट ये है कि मुझे अपने नफ्स की अंदरूनी तहों को समझना होगा कि मेरे शऊर की बनावट में, मेरे नफ्स की तश्कील में, मेरे मिजाज के अज्जाए तरकीबी क्या हैं। मतलब मैं इन सब के अंदर पहले मैं अपने आप को टटोलूँगा और अपने आप को समझूंगा, और उसके बाद मैं वो जगह तलाश करूँगा कि मैं असल में, मुझे ऑपरेट करने वाला जो सबसे कीमती ऑर्गन है जिसका नाम कल्ब है, उसके अंदर चल क्या रहा है। तो मुझे अपने आप को समझना होगा और फिर मुझे अपने आप को ठीक करना होगा, मुझे अपने आप को प्योरीफाई करना होगा, जिसको प्योरीफिकेशन ऑफ सेल्फ कहते हैं, जिसको प्योरीफिकेशन ऑफ विशेस कहते हैं, जिसको प्योरीफिकेशन ऑफ इंटेंट कहते हैं। तो मुझे अपने अंदर बड़ी तब्दीलियां लानी होंगी, मुझे अपने आप को, अपनी एक्चुअल सेल्फ को ठीक करने की ज़रूरत होगी। उसके बगैर मैं ये काम नहीं कर सकता। मतलब बॉस को राज़ी रखना और क्लाइंट को मुतमईन करना या कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अचीव करके दिखाना, इसके लिए मुझे अपने कल्ब के तस्किए की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ये एक अलग बॉल गेम है। लेकिन बीवी या बच्चों या वालदेन या बहन भाइयों से एक गहरा ताल्लुक़ बनाना, इस वक्त हम ये काम कर नहीं पा रहे और इसके नतीजे में बहुत नुकसान हो रहा है। अल्लाह ताला मुस्लिम उम्मा की एनर्जी का जो ड्रेन ताल्लुक के ना होने की वजह से जारी है, अल्लाह उसका इंतज़ाम फरमाए और हम अपने ताल्लुकात की, अपने ताल्लुक की इस्लाह कर सकें, अपने टूटे हुए ताल्लुक को रिपेयर कर सकें, ताकि हमारा एनर्जी ड्रेन बंद हो और हम किसी वर्थवाइल मिशन में अपने आप को लगा सकें, हमें वो मावनीन मुयस्सर आ जाएं, हमें वो हेल्पिंग हैंड्स मुयस्सर आ जाएं, जो एक दूसरे को थामने, एक दूसरे को पकड़े रखने, एक दूसरे को सही रास्ते पर लगाने के लिए एक दूसरे के मावन हो जाएं। अभी इस वक्त ये सिचुएशन नहीं है, अभी ये ताल्लुक बहुत ही कमज़ोर है। और मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप अगर अपने बच्चे से गहरा ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं। अच्छा, एक बात मैं और अर्ज़ करूँ, ताल्लुक़ बनाने की ज़रूरत क्यों है? ताल्लुक़ यानी ताल्लुक़ क्यों ज़रूरी है? अगर इसकी बात की जाए तो ताल्लुक़ क्यों ज़रूरी है, इसकी दो तीन वजूहात हैं। ताल्लुक़ इसलिए ज़रूरी है, सबसे पहली वजह ताल्लुक़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ताल्लुक़ मेरी और आपकी अपनी नफ्सियाती सेहत की ज़रूरत है। हम अपनी नफ्सियाती शिफायाबी का इंतज़ाम गहरे और ख़ूबसूरत और बामानी ताल्लुक़ में रहने के नतीजे में कर पाते हैं। हमारी नफ्सियाती सेहत जो है वो किसी दवाई से मुमकिन नहीं होती, हमारी नफ्सियाती सेहत एंटी डिप्रेसेंट्स की मरहूने मिन्नत नहीं होती। हमारी नफ्सियाती सेहत का पहला इंतज़ाम गहरा और ख़ूबसूरत ताल्लुक़ होता है और हमारी नफ्सियाती सेहत का दूसरा इंतज़ाम ईमान होता है। तो एक मसला तो ये है कि ताल्लुक़ इसलिए ज़रूरी है ताकि हम साइकोलॉजिकली फ़िट रह सकें। दूसरी वजह ताल्लुक़ की ये है कि ताल्लुक़ इसलिए ज़रूरी है ताकि हम आदाब बंदगी बजा लाएं। यानी बंदगी का एक चैनल है अल्लाह और बंदे के साथ कुछ मामलात हैं। अल्लाह ने आपसे कहा रोज़ा रखो, अल्लाह ने आपसे कहा कि खड़े हो जाओ फजर की नमाज़ पढ़ने, अल्लाह ने आपसे कहा कि नमाज़ इस तरह पढ़ो, ये आप और अल्लाह की दरमियानी बात है। लेकिन अल्लाह ने बंदगी के कुछ तकाज़े इंसानों के ज़रिए हम पर लाजिम किए हैं। यानी ये जो बूढ़े से आदमी है ना जो खांसते रहते हैं, इनकी बातों पे उफ़ मत कहना, ये जो तकाज़ा है ना ये आसान बात नहीं है। ये जो बच्चा है ना जो शोर मचा रहा है और तुम हालत नमाज में और वो शोर कर रहा था, तो बहरहाल नमाज सलाम फेरने के बाद उसकी पिटाई मत लगाना, कोई बात नहीं वो शोर कर रहा था। इसलिए कि इंसान कामिल ने तो ये भी इजाज़त दे रखी थी कि वो नमाज़ पढ़ रहे थे और वो उनके कमर पे स्लाइड कर रहे थे। यानी हमें तो पता है ना कि इंसान कामिल के साथ बच्चों का ताल्लुक़ कैसा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर को बच्चा जो है स्लाइड बना के उस पे स्लाइड कर सकता है, और मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मुझ जैसा गुनाहगार आदमी नमाज़ पढ़ रहा है तो वो कुर्सी भी नहीं खिसका सकता मेरे जलाल से डर के। तो ये मतलब अल्लाह मुझे ठीक करे, अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता करे। तो ताल्लुक़ का जो दूसरी ज़रूरत है वो बंदगी का जो चैनल अल्लाह ने, जो बंदगी का हॉरिजॉन्टल चैनल है, बंदगी का एक वर्टिकल चैनल है, मतलब अल्लाह को सजदा करना और अल्लाह को क़िबला रूह होकर नमाज़ पढ़ना, ये एक तकाज़ा है। लेकिन अपनी बहन या अपने भाई या अपनी बीवी या अपने शोहर या अपने बच्चों के साथ ताल्लुक़ कायम करके हम बंदगी का दूसरा तकाज़ा निभा पाते हैं। तो बंदगी का तकाज़े निभाने के लिए ताल्लुक़ ज़रूरी है। और ताल्लुक़ क्यों ज़रूरी है, उसकी तीसरी वजह यह है कि तरबिया जो है मुमकिन ही नहीं है अगर ताल्लुक़ नहीं है। ताल्लुक़ गहरा और ख़ूबसूरत बनाए बग़ैर तरबिया नहीं हो सकती। तरबिया का नॉन निगोशिएबल प्री रेक्विज़िट का नाम है ताल्लुक़। तो ताल्लुक़ क्यों ज़रूरी है, उसकी तीन बड़ी वजूहात मैंने अर्ज़ की, हमारी अपनी नफ्सियाती सेहत, बंदगी के तकाज़े और तरबिया की, ये एक नॉन निगोशिएबल प्री रेक्विज़िट है ताल्लुक़। तो ताल्लुक़ इसलिए ज़रूरी है, अल्लाह हमें ताल्लुक़ की नज़ाकत ज़रूरत को सही तौर पर समझने, इसका एहसास करने वाला बनाए। अब आगे एक दो चीज़ें बस मैं अर्ज़ करूँगा, बाकी मैं यहाँ पे रोकूँगा अपनी बात, कि क्या किया जा सकता है। अगर हमें ये बात समझ आ गई कि ताल्लुक़ कितना अहम है, हमें ये बात मैंने अब तक जो बात की है उसमें मैंने एक बात ये की है, मैं अगर अपनी अब तक जो बात हुई है पहले मैं इसको समअप कर देता हूँ। मैंने शुरू में ये बात की कि हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, अपने बच्चों के बारे में क्या सोचना है, उनसे क्या, उनके बारे में क्या मंसूबे बनाने हैं, ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, इसके हवाले से जो कुछ भी हमारी एक्सपेक्टेशंस या मंसूबे या जो कुछ भी हमारे एक्शंस हैं उसके पीछे एक बड़ी बामानी इल्मियत मौजूद नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह यह है कि लाशऊरी तौर पर हम भाग रहे हैं और हम फॉलो कर रहे हैं और एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और एक भेड़ चाल में चल रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये हम शऊरी तौर पर नहीं कर रहे, और अल्लाह का शुक्र है कि ये दुनिया को इस ट्रैक पर डालने की हमने नहीं डाला, कम से कम जब किसी और ने डाला था हमने फॉलो किया, तो ये तो चलें अच्छी बात है। लेकिन हम लाशऊरी तौर पर जो फॉलो कर रहे हैं उससे निकलना हमारी ज़िम्मेदारी है, हमसे पूछा जाएगा। उसके बाद मैंने ये अर्ज़ किया कि तसव्वुरे कामयाबी अगर ठीक नहीं होगा तो मामला ठीक नहीं होंगे। तो तसव्वुरे कामयाबी में मैंने ये बात अर्ज़ की कि उखरवी कामयाबी, यानी अगर आपका बच्चा हार्वर्ड में दाखिला ले लेता है लेकिन जन्नत में दाखिला नहीं ले पाता, तो इसको हम में से कोई भी इंसान कामयाबी तसव्वुर ना करे और हम इस बात को समझें कि हमारे बच्चों की असल कामयाबी क्या है। फिर हमने ये बात की कि क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का फ़र्क क्या है, और फिर हमने ये बात की कि ताल्लुक़ से हमारी मुराद क्या है और ताल्लुक़ से हमारी क्या मुराद है, उसमें मैंने चार पांच बातें अर्ज़ की, ठीक है, वो एतमाद ले सकें, एतमाद दे सकें, बात कर सकें, मसला बयान कर सकें, मशवरा ले सकें, स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस या ग्रुप की एक एहसास हो, और फिर एक उसका हायर लेवल ये है कि हम किसी की एक्सपेक्टेशंस हमारे लिए अहम हो जाएं। ये सारी बात करने के बाद मैंने ये बात अर्ज़ की कि क्यों हम, यानी ताल्लुक़ क्यों ज़रूरी है। तो ताल्लुक़ इसलिए ज़रूरी है, मैंने उसकी तीन वजूहात बयान की। अब मैं ये बात अर्ज़ करूँगा कि ताल्लुक़ क्यों नहीं बन पा रहा, ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, चैलेंज क्या है। ये सारी बात समझ लेने के बावजूद ताल्लुक़ बन क्यों नहीं पा रहा, उसकी दो तीन वजूहात। मेरे नज़दीक उसकी जो बहुत बड़ी वजह है वो ये है कि हमारे, यानी बहुत बड़ा तबका तो वो है जिसे ताल्लुक़ की ज़रूरत, अहमियत, नज़ाकत का शऊर नहीं है। यानी इसको मैं इस तरह बयान करूँगा कि ताल्लुक़दारी और दीनदारी, इन दोनों को हमने अलग अलग समझा हुआ है। हमें लगता है कि ताल्लुक़दारी कुछ और चीज़ होती है और दीनदारी कुछ और चीज़ होती है। मैं एक बात आपसे अर्ज़ करूँ कि ताल्लुक़दारी वो मीडियम है जिसके अंदर दीन परफॉर्म हो सकता है। यानी ताल्लुक़दारी, यानी आप समझिए कि, यानी ये वो मीडियम है जिसमें ये मछली तैरेगी। ताल्लुक़दारी और दीनदारी को अलग अलग कर देने के नतीजे में बड़ा नुकसान होता है, बड़ा नुकसान होता है। यानी अगर हमारा मजहबी फहम या हमारा दीनी शऊर ताल्लुक़ की खूबसूरती पर मुझे उकसाता नहीं है, अपने टूटे हुए ताल्लुक़ को सही करने पर मुझे मजबूर नहीं करता, अपने ताल्लुक़ की हिफाजत करने, अपने ताल्लुक़ को अच्छा बनाने के जज्बे और उस मिशन पे मुझे लगाता नहीं है, तो ये मेरे लिए बड़ी अफसोसनाक बात है। मतलब तो एक मसला ये है कि हम इस मसले को, ताल्लुक़ को, इसकी नज़ाकत को, इसकी अहमियत को हमारे माशरे में उस तरह पहचाना नहीं गया, हम उसको समझे ही नहीं कि ताल्लुक़दारी क्या है। हम एक ऐसे दौर में ज़िंदा हैं, आप किसी को फ़ोन कीजिए और किसी से बात कीजिए और बग़ैर किसी काम के फ़ोन कीजिए तो बहुत मुमकिन है कि वो माइंड करेगा, वो कहेगा आप क्या बहुत फारिग हैं, आप क्यों कर रहे हैं मुझे फ़ोन। जब आपने फ़ोन किया और थोड़ी देर आपने कहा भाई क्या हाल है, कैसे हैं, वो भी जवाब में कहेगा जी क्या हाल है, कैसे हैं, फिर उसके बाद वो एक्सपेक्ट करेगा कि अब आप उसे कोई काम बताएंगे या उसे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि ताल्लुक़ का मकसद होता है। जब भी कोई इंसान किसी से ताल्लुक़ बनाने की कोशिश करता है तो उसका कोई मकसद होता है। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि मगरब के तनाजुर में ताल्लुक़ का कोई मकसद होता है और ये बात उनके यहाँ चलेगी, उनके यहाँ ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, ये उनका वर्ल्ड व्यू है। मैं आपसे बात ये अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी ईमानी तनाजुर में ताल्लुक़ ही मकसद होता है। वहाँ पर ताल्लुक़ मकसद के ताबे होता है, यहाँ ताल्लुक़ ही मकसद होता है। आपने पड़ोसी को फ़ोन किया, आपने कहा भाई क्या हाल है, आपके खैरियत है, बस मैंने सोचा बहुत दिन से आप नज़र नहीं आए थे तो मैंने कहा आपसे पूछ लूँ खैरियत है, आपके घर में सब ठीक है, बीमार तो नहीं है, आप मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, मस्जिद में भी नज़र नहीं आ रहे थे, बाज़ार में भी नज़र नहीं आ रहे थे, महल्ले में भी काफ़ी दिन से मेरी आपकी शक्ल नज़र नहीं आई थी, तो बस वैसे ही मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे पूछूँ कि सब खैरियत है, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है, कोई काम हो तो मुझे बताइएगा। तो ये बात फ़र्ज़ है, सुन्नत है, नफिल है। अगर ये आज मुसलमानों में से MCQ का क्वेश्चन किया जाना, ये फ़र्ज़ है या नफिल है या सुन्नत है, तो वो कहेगा भाई ये मतलब कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। मैं कभी कभी याद करता हूँ, आज से 40 साल पहले, मैं एक बहुत पर्सनल अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस, अपनी अपनी लाइफ की एक ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर करता हूँ। जब मैं छोटा था, आज से 40 साल पहले, तकरीबन 40 साल पुरानी बात है, 1980, यस आई रिमेंबर दैट वॉज 1980, यानी वो पीरियड था। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का बहुत एहसान है, मैं अभी भी उसी मोहल्ले में रहता हूँ जिस मोहल्ले में पैदा हुआ, ये भी अल्लाह की बड़ी इनायत है मुझ पर। वो 40 साल पहले उस महल्ले में कोई 40 के करीब फैमिलीज़ रहती थी, 40, देर वर अबाउट 40 फैमिलीज़ इन अवर नेबरहुड। उन 40 फैमिलीज़ में से सिर्फ दो फैमिलीज़ ऐसी थी जिनके घरों में टेलीफोन लगा हुआ था, टेलीफोन। लेकिन जनाब वो जो बाकी 38 फैमिलीज़ थी ना, किसी का भी कोई टेलीफोन आता था तो वो उन्हीं दो नंबरों पे आता था। और आप यकीन मानिए, दीज 40 फैमिलीज वर लिविंग लाइक वन फैमिली। यानी किसी और के कमरे में लगा हुआ है तो उसका फोन तो बस मुझे आ गया तो मैं चला गया। और आप यकीन मानिए, वो इतनी जिम्मेदारी से और इतनी खुशी से और इतने जज्बे से किसी का भी टेलीफोन आ जाए उसके घर से उसको बुला के लाते थे और वो वहाँ बैठ के बात करता था। और उस ज़माने में जो यानी दूसरे मुल्क से जो कह लीजिए कौन सी वो कॉल कहलाती थी, जो वो दूसरे मुल्कों से जो कॉल आती थी तो वो पहले से बुक होती थी, वो डायरेक्ट कॉल तो नहीं होती थी। तो वो ऑपरेटर मिलाता था, वो 3 मिनट की कॉल होती थी। तो वो पहले उनको कॉल करके बताता था कि जनाब वो फलां रज़िया आपा के घर से उनको बुला लीजिए, मैं रज़िया आपा की बहन बात कर रही हूँ मस्कत से, या मैं फलां जगह से लीबिया से बात कर रहा हूँ। तो वो अब वो बड़े भागे भागे जाते थे और रज़िया आपा को बुला के लाते थे, वो रज़िया आपा बैठ जाती थी और फिर अब फ़ोन का इंतजार होता था और फिर बैठ के बातें होती थी। इतनी देर में वो चाय वाय भी पिला देते थे और इतने खुश होते थे। और वो दो घर थे एंड देयर वर 40 फैमिलीज, और जो आपस का ताल्लुक़ था वो बड़ा गैर मामूली ताल्लुक़ था और बड़ी मोहब्बत थी। और आप यकीन मानिए इतने शौक़ और इतने जज्बे और इतनी ज़िम्मेदारी से जो ये काम करते थे। मैं एक दिन अभी पिछले दिनों किसी मजलिस में बैठा हुआ था, किसी 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 गैदरिंग में बैठा हुआ था और मैंने ये बात कही कि इस गैदरिंग में जितने लोग हैं सबकी जेब में एक मोबाइल है। अगर किसी की जेब में जो मोबाइल है और ये हम 10-12 लोग बैठे हुए हैं, अगर किसी एक साहब की जेब में जो मोबाइल है वो बार बार बजे और सब लोगों के लिए उसमें फ़ोन आ रहा हो, तो वो 2-4 लोगों को फ़ोन सुनाने के बाद फिर वो परेशान हो जाएंगे, क्या मतलब आपने मेरा नंबर इन लोगों को दिया हुआ है, ये बार बार मुझे फ़ोन कर रहे हैं, ये अजीब सा उसे लगेगा। और वो जो दो फैमिलीज थी उन्हें सबका पता था कि किसका मामू के कितने बच्चे हैं, किसके चचा के कितने बच्चे हैं, किसकी खाला कहाँ रहती हैं, किसके दादा कहाँ रहते हैं, उनकी तबीयत का। वो तो फ़ोन करके बंद करता था, वो खुद भी उनसे अच्छे खासा बात करते थे। दे वर नॉट जस्ट टेलीफोन ऑपरेटर्स, वो पहले फ़ोन करते थे, अच्छा तो आपकी तबीयत तो ठीक है, पिछली दफ़ा आपने फ़ोन किया था तो आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब ठीक हो गई, बेटा कहाँ है, बेटी कहाँ है, इतनी बातें होती थी। ये जो ताल्लुकदारी का जौहर था ना, ये मुतासर हो गया। ये क्यों मुतासर हुआ? उसकी वजह यह है कि चीज़ें अहम हो गई। देखें जितना हमारी ज़िंदगी में कंफर्ट ऐड होगी, कुछ कम ज़रूर होगा, वो ढूंढना होगा कि क्या कम हुआ। वी आर एडिंग कंफर्ट ऑन व्हाट कॉस्ट, ये हमें देखने की ज़रूरत है। क्या हम आराम, यानी मैं आपको बताऊं, जब बहुत आरामदेह सोफ़ा आप घर में ख़रीद के लाते हैं ना और फिर आप ये शिकायत करते हैं कि मेरे बच्चे जो है ना एक्टिव नहीं है, उसकी एक वजह आपने प्रोवाइड की है बहुत महंगा, बहुत ओवरली कंफर्टेबल सोफ़ा ख़रीदने के बाद। क्योंकि उसके बाद जब सोफे में धंस जाते हैं ना आप, तो उठने का दिल नहीं चाहता, तो कहते हैं अच्छा लग रहा है बस बैठे रहो इसमें। बल्कि हम कहते हैं अरे इस सोफे में बैठने के बाद मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं उठूं। अगर आपके घर में कोई ऐसा सोफ़ा है जिसमें बैठने के बाद उठने का दिल नहीं चाहता, तो आप अपने पैसों से अपने नफ्स को उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। यानी ये आप अपने नफ्स को, अपने नफ्स की पैम्परिंग कर रहे हैं, आप अपने नफ्स को ओवर फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो आप मतलब रीजनेबली कंफर्टेबल सोफ़ा हो, मैं ये नहीं कह रहा कि कंफर्टेबल सोफ़ा ना हो, लेकिन वो ऐसा ना हो जो आपको, यानी अगर आपकी वालदा ने आवाज़ दी है तो आप इसलिए नहीं उठ पा रहे क्योंकि सोफ़ा बहुत कंफर्टेबल है। तो वालदा की आवाज़, ज़रा इधर आना, मैं किचन में, ज़रा मेरे पास आना, और आपने कहा हाँ आता हूँ, आपसे उठा नहीं जा रहा इसलिए कि सोफ़ा बहुत कंफर्टेबल है। तो वालदा की आवाज़ और सोफ़े की कंफर्ट, इन दोनों के दरमियान एक क्रिएटिव टेंशन है। वालदा इज़ कॉलिंग, सोफ़ा इज़ कम्फर्टेबल, वालदा इज़ कॉलिंग, सोफ़ा इज़ कम्फर्टेबल। सो वालदा ने 3 दफ़ा आवाज़ दी तो फिर आपने कहा हो क्या, आप क्या मसला है बताएं, इधर ही से बता देना, आप इधर आ जाए ना। ये जो हमारा एटीट्यूड डेवलप हुआ है ना, इसमें सोफ़े का भी बड़ा कमाल है। सोफ़े मतलब नज़र को खीरा करती है, चमक तहजीब हाजिर की, ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेज़ाकारी है। तो अल्लाह मुझे और आपको माफ़ करे, ये यानी तेरे सोफ़े हैं अफरंगी, तेरे कालीन हैं ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। ये हमारा मसला है, अल्लाह हमारे लिए आसानी का मामला करे। तो मैं समझता हूँ कि ताल्लुक़ क्यों नहीं निभाया जा सका, उसकी कई वजूहात हैं। जदीदियत इसकी एक बहुत अमूमी वजह है, लेकिन अगर हम उसके अंदर बहुत स्पेसिफ़िकली पॉइंट आउट करें तो चीज़ें इतनी आ गई हैं, आसाइशें इतनी हो गई हैं, हमने अपने अपने आइलैंड्स बना लिए हैं, हम अपने आइलैंड्स में खुश हैं। और हम कहते हैं कि भाई ठीक है, पहले एक आइलैंड था जो, यानी ये जो मैंने मिसाल दी ना कि 40 ईयर, ये सिर्फ 40 साल, यानी 40 साल का है, 1980 का मैंने आपको एक्सपीरियंस शेयर किया है। इस वक्त हमारे हमारी हमारे महल्ले में अब उससे भी ज़्यादा फैमिलीज़ होती हैं जितनी पहले होती थी, और हर घर में मेरा ख्याल है ऑन एन एवरेज 8-10 टेलीफोन्स तो हर घर में फ़ोन्स होंगे, लेकिन बहरहाल वो कनेक्शन नहीं है लोगों का आपस में। तो ये बहरहाल उसकी एक वजह है। दूसरी एक बहुत बड़ी वजह ताल्लुक़ ना बना सकने की, वो है मसरूफियात, सैलाब मसरूफियत। हमें ऑफलोड करना होगा कुछ, हमें अपने आप को कुछ मसरूफियात कम करनी होंगी, यानी मसरूफियात को कम किए बग़ैर। देखिए टाइम मैनेजमेंट का हमारी ईमानी तनाजुर में गोल ये होना चाहिए कि मुझे कुछ फ्री टाइम मेरी लाइफ में क्रिएट हो जाए जिसमें मैं गौर व फिक्र कर सकूँ, पॉन्डर कर सकूँ, अपने अपने साथ अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी को एक्सपीरियंस कर सकूं। और किरामन कातिबीन तो लिखते ही रहते हैं मेरी हरकतें, मैं खुद भी किसी पेपर पे लिखूं कि मैं कर क्या रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कैसा कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो कब मुझे ये वक्त मिलेगा कि मैं ये बात सोचूं? इसके लिए मेरे पास फ्री टाइम होना चाहिए। इस वक्त हमारी जो लाइफ है उसमें बैक टू बैक मसरूफियात हैं, बिल्कुल बैक टू बैक मसरूफियात हैं। और हमारे वो आवर्स जो कमाने की नज़र होते हैं या हमारे कैरियर की नज़र होते हैं, उसमें मुस्तकिल हर 15 साल के बाद 1 घंटा बढ़ रहा है हमारी कैरियर रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अंदर, जिसको मुस्लिम उम्मा चैलेंज नहीं कर रही। यानी हर 15 साल के बाद तकरीबन 1 घंटा हमारे कैरियर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में बढ़ा है। मतलब आप 40 ईयर्स पहले आप तलाश 45 ईयर्स पहले देवर 3 आवर्स लेस। यानी हमारी आप देखिएगा, आपके वालिद साहब, यानी आपके वालिद साहब 45 साल पहले जितना टाइम अपने कैरियर को देते थे, इस वक्त आप अपना जितना टाइम इस कैरियर को दे रहे हैं। और अगर यही, और अभी ऑनलाइन आने के बाद तो मतलब, यानी हम अपने कैरियर से ग़ुलामी का वो हक निभा रहे हैं, यानी वो उस दर्जे पे निभा रहे हैं जैसे अल्लाह से ग़ुलामी का, यानी जिस तरह निभाना था। मतलब ये हमें इससे निकलने की ज़रूरत है, हमें देखने की ज़रूरत है कि कितना टाइम हम इसको दें। तो हमें अपनी मसरूफियात को कम करना होगा, अपनी लाइफ को सिंपल करना होगा, अपनी ख्वाहिशात नफ्स को समझाना होगा अपने आप को कि भाई अपनी आरजुओं को ठीक कर लो। तो नए मॉडल के मोबाइल फ़ोन और नए ब्रांड्स के कपड़ों की ख्वाहिश को रोकना होगा, क्योंकि अगर ये ख्वाहिशात कम नहीं हुई तो फिर कमाने की ज़रूरत कम नहीं होगी, फिर बहुत ज़्यादा कमाना पड़ेगा, फिर बहुत ज़्यादा, फिर चीज़ें खरीदने जमा करने के लिए बहुत सारा कमाना पड़ेगा, बहुत सारा कमाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें रह जाएंगी तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। तो मसरूफियात को कम करना है, ये एक दूसरा। और तीसरी बात ये कि अपने मिजाज पे गौर करना है, अपनी नफसियाती सेहत, अपने मिजाज, उस पर गौर करना है। अपने मिजाज पे गौर करने के लिए अपने साथ वक्त गुजारना है, अपने साथ टाइम लगाना है, और सोचना है कि कोई इंसान किसी इंसान को चेंज नहीं करता। अल्लाह की तौफीक से इंसान अपने अज़्म, अपने इरादे, इससे इंसान अपने आप को चेंज करता है। अल्लाह ने इंसान को इतनी इज़्ज़त अता की है कि उसकी विल पावर को अल्लाह ने बड़ी बड़ी तौकीर बख्शी है। यानी अल्लाह ने इंसान की विल पावर को इतना इतना इनेबल कर रखा है कि जब इंसान ये इरादा करता है, अज़्म करता है कि मुझे मुझे ठीक करना है अपने आप को, तो अल्लाह ने उसकी विल पावर को बड़ा ब्लेस किया है, बड़ा बड़ा एम्पावर किया है उसकी विल पावर को। और जब इंसान इरादा कर ले अपने आप को ठीक करने की कोशिशें शुरू कर दे, तो अल्लाह बड़ा उसको मदद करता है। ये अल्लाह ने इंसान को अता किया। तो बस हमें अपने साथ वक्त गुजारना है, अपने मामलात ठीक करने हैं। और यानी हम सबको ये बात पता है कि डाइवोर्स रेट दुनिया में बढ़ रहा है, और तकलीफ़दह बात यह है कि अल्लाह के मानने वालों की जो सोसाइटी है उसमें भी उसी उसी तेज़ी से बढ़ रहा है जिस तरह अल्लाह के बागियों की सोसाइटी है। तो ये तकलीफ़दह बात है, मतलब क्यों बढ़ रहा है ये? तो ये एक, मैं समझता हूँ कि इसी तरह एक तो मियाँ बीवी एक दूसरे को डाइवोर्स देते हैं ना, एक औलाद भी अपने वालदैन को डाइवोर्स दे के चली जाती है, वो कहती है कि नहीं मुझे आपके साथ नहीं रहना, ये भी चल रहा है। बहन भाई भी एक दूसरे को सेपरेशन सेपरेशन सेपरेशनिज़म या आइसोलेशनिज़म जो है ये बहुत तेज़ी से, इंडिविजुअलिज्म, आइसोलेशनिज़म, सेपरेशनिज़म, और अपने अपने आइलैंड्स बना के उसमें रहना, और ऑल दैट यू नीड इज़ टू क्रिएट अ वेरी कंफर्टेबल आइलैंड, बहुत अच्छा कंफर्टेबल आइलैंड हो। और मैं एक चीज़ ये पैदा हुई है कि भाई मुझे मुझे अपने आप को इतना डेवलप करना है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत ही ना रहे, यानी इस जगह पर पहुंच गए भाई। ये अजीब सी बात है, मतलब अल्लाह ने एक निज़ाम रखा था, एक दूसरे की ज़रूरत अगर है तो अच्छी बात है, इसमें क्या है? मतलब अपना ताल्लुक़ अच्छा रखें, लोगों से मिलें। ये चीज़ हमारी हमारी बड़ी तेज़ी से ये दुनिया में ताल्लुक़ का बहरान पैदा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि तेल के क्राइसिस से बड़ा क्राइसिस है रिलेशनशिप क्राइसिस, मैं समझता हूँ कि रिसेशन से बड़ा क्राइसिस है रिलेशनशिप क्राइसिस, और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी, इस दुनिया में वॉर्स होती हैं, ये तो नज़र आने वाली वॉर्स होती हैं, लेकिन जो सास बहू की वॉर होती है, जो मियाँ बीवी की वॉर होती है, जो सिबलिंग्स की वॉर होती है, जो चचा और भतीजे की वॉर होती है, जो बाप और बेटे की या माँ और बेटी की वॉर होती है, ये वॉर किसी भी रूए ज़मीन पे लड़ी जाने वाली वॉर से ज़्यादा मोहलिक, ज़्यादा ख़तरनाक होती है, और इसमें मुस्लिम उम्मा की एनर्जीज वेस्ट हो रही हैं। हम अपनी इंटेलेक्चुअल और अपनी जो भी क्रिएटिव एनर्जी है उसको हम ठीक से नहीं यूटिलाइज़ कर पा रहे। तो अल्लाह मुझे भी आपको भी इसकी क़दरदानी की तौफीक दे, यानी ताल्लुक़ को खूबसूरत बनाए बग़ैर हम बंदगी के तकाज़े नहीं निभा सकते, ताल्लुक़ को खूबसूरत बनाए बग़ैर हम तरबिया नहीं कर सकते, मतलब बल्कि जो भी कोशिश करेंगे हम उसे दीन से दूर करेंगे। यानी अगर मैं अपने बच्चों का पसंदीदा नहीं हूँ और दीन को उसको देने की कोशिश कर रहा हूँ तो ख़तरा इस बात का है कि उसे दीन से बेजार कर दूँगा, यानी ये बहुत बड़ा ख़तरा इस बात का है। तो मुझे इस बात से डरना चाहिए, मतलब मैं अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा दीन को पसंद करे या मेरा बच्चा वो पसंद करे जो मैं पसंद करता हूँ, तो मुझे अपने बच्चे का पसंदीदा इंसान बनने के लिए क्वालिफ़ाई करना होगा। तो इस पर वक्त लगाने की ज़रूरत है और मैं चाहूँगा आप इस पे क्वेश्चंस कीजिए। और अभी चाहे मैं बहरहाल मुख्तलिफ बातें मैंने इससे मुतालिक कोशिश की के रखूँ, मुझे नहीं पता कि अल्लाह करे कि आप इससे परेशान हुए हों, क्योंकि मैं ये चाहता था कि आप परेशान हों, और अल्लाह करे कि आपके जहन में बहुत सारे सवालात भी पैदा हुए हों, क्योंकि मैं चाहता था कि आपके जहन में सवालात पैदा हों, और कुछ सवालों का आपको जवाब मिला हो लेकिन बहुत सारे सवाल आपके जहन में पैदा भी हो गए हों, क्योंकि ये अच्छा है कि आप इस पर सोचें इंशाल्लाह। और प्लीज़ ये एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि क्वेश्चन आंसर सेशन में सबके सवालों का जवाब मिल जाएगा, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, कुछ सवालों का जवाब मिलेगा। ये एक मतलब जितनी हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमने किसी इलेक्ट्रिक बेल को स्टडी करने में जितना टाइम लगाया, इतना टाइम भी नफ्स को स्टडी करने में नहीं लगाया। आप गौर कीजिएगा, इलेक्ट्रिक बेल किस किसने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक बेल व्हेन यू वर इन योर स्कूल, इलेक्ट्रिक बेल उसका फंक्शन कैसे काम करती है, उसका क्या सिस्टम है, इलेक्ट्रिक बेल के ऊपर को पढ़ने में जितना टाइम लगाया है उतना टाइम नफ्स किसे कहते हैं इस पर नहीं लगाया। और मसला ये नहीं है कि ये मतलब अल्लाह के मानने वालों को भी इसका इसकी तौफीक नहीं हो सकी, ये है मसला। मतलब 7 अरब की बात नहीं कर रहा मैं, 1.5-2 अरब वालों की बात कर रहा हूँ। 7 अरब बाकी लोगों की माफ़ी है, बाकी लोगों का मसला अलग है, हमारा मसला अलग है। तो हम अगर अपना मसला ठीक नहीं करेंगे तो फिर मतलब अल्लाह बस आसान फरमाए। मेरी बहुत ख्वाहिश और मेरी दुआ, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मुस्लिम उम्मा को जिस बड़े इंसान की ज़रूरत है वो इंशाल्लाह आपके घरों में परवरिश पा रहा होगा, और इंशाल्लाह ताला मुस्लिम उम्मा को जिस लीडरशिप की ज़रूरत है वो इंशाल्लाह, चूँकि चीज़ें हालात बेहतर हो रहे हैं, तरबिया की फ़िक्र आम होनी शुरू हुई है, इस पर सोचना शुरू हुए हैं, कि अल्लाह इसको कबूल करे, और अगर इसकी हमें ठीक से तौफीक हो जाए अल्लाह बड़ी मदद करेगा। मतलब इसमें ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ हमें अपने आप को ठीक करना है, इरादा करना है, इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा।
अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम दरख्शा है। मेरा सवाल ये है कि आजकल स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत बढ़ गया है, ख़ासतौर पर तालीमी एतबार से, और फिर जो इंटरटेनमेंट वगैरह होता है तो वो भी ज्यादातर बच्चों का टाइम टीवी पे या लैपटॉप्स पे या मोबाइल्स पे गुजरता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक इफेक्टिव तरीके से कि हम बच्चों को मना भी ना करें कि हर दफा आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं और आप मना कर रहे हैं, उसके बजाय कोई ऐसा तरीका बताइए कि जिससे हम उनको एक उनको बात समझ में आ सके कि अगर वो इससे कोशिश करके एक लिमिटेड टाइम तक यूज करेंगे अपना स्क्रीन तो वो उनके लिए बेहतर है।
बहुत शुक्रिया दरख्शा साहिबा, आपने सवाल किया। 2-3 बातें बस इसमें मुख्तसरन मैं बयान कर रहा हूँ, ये भी एक ऐसा मौजू है जिस पर काफ़ी तफसील से बात हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर 3 बातें बस मैं इस हवाले से रखूँगा। पहली बात तो ये कि हमें ये देखना है कि हम टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है उसका एक रिस्पॉन्सिबल यूज़ और रिस्पॉन्सिबल रवैया मॉडल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। मतलब मैं बतौर वालिद या वालदा अपने बच्चों के सामने एक उसका ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल कितना करना है, कब करना है, हर वक्त नहीं करना, कई क्योंकि बाहर बहुत से काम उस पर ज़रूरी होते हैं, काम के हैं, ठीक है आप, लेकिन उसको किस तरह लिमिट करना है। तो पहला काम तो यह है कि मैं उसका ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल करूँ और अपनी ज़िंदगी में उसको यानी मेरी पर्सनल लाइफ को इनक्रोच ना होने दूँ इन गैजेट्स की से या दूसरी चीज़ों से। तो एक काम तो यह है जो मुझे करना चाहिए, अगर ये काम नहीं हुआ है तो फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो पहला हमारा अपना अमल है कि हम किस तरह इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा काम यह है बच्चों से शऊर की सतह पर ये बात डिस्कस होनी चाहिए, यानी उनके शऊर में वो ये बात रियलाइज़ करें और इस बात को समझें कि ये जो गैजेट्स हैं या ये जो मोबाइल का यूज़ है या स्क्रीन टाइम है, इसकी ठीक है हमें कुछ ज़रूरत होती है, इसके कुछ काम होते हैं, लेकिन इसको हमारी ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं और हमारी हमारी ज़िंदगी के अंदर इन मुख्तलिफ कामों की क्या ज़रूरत और क्या अहमियत है, क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, कितना किसी चीज़ का इस्तेमाल होना चाहिए। और एक चीज़ तो ये कि वो जो मोबाइल फ़ोन है उसका इस्तेमाल अगर ज़रूरत है तो ही हो, गैर ज़रूरी तौर पर ना हो, और ज़रूरत में भी जब हो रहा है तो वो कितना हो और उसको लिमिट किया जाए, और वो खाने की टेबल पे ना हो और बेड सोते हुए ना हो, यानी हर वक्त उसको लेके ना बैठे, मतलब उसकी ज़रूरत को लिमिट किया जाए और जो ज़रूरी इस्तेमाल है वो किया जाए, और वो भी अपनी ज़रूरत के तहत उस मिनिमम टाइम के अंदर ही किया जाए, और उसको अपनी ज़िंदगी में जो ज़रूरी और महदूद इस्तेमाल है उस तरह ही किया जाए, और बाकी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, यानी अहम बात यह है कि हमारी ज़िंदगी, एक सवाल तो यह है कि एक मसला यह है कि गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना हो, और एक मसला यह है कि हम इसको, यानी हमारी लाइफ जो है वो टेक्नोलॉजिकल इन्वेजन की वजह से जिस तरह से मुश्किलात का शिकार हुई है, स्क्रीन एक्सेसिव स्क्रीन टाइम की वजह से जो हमारी आसाब और नफ्सियात और आँखें और जिस्म के लिए जो सेहत के लिए जो नुकसानात हुए हैं, तो उनसे भी बच्चे आगाह हों, इस बात को समझें। तो ये बात समझाने से इतना हल नहीं होगी जितना मुकालमा करने से होगी। बच्चों के साथ बैठ के इस पर बातें कीजिए, उनसे ख़ुद पूछिए कि आपके ख्याल में इसका अच्छा इस्तेमाल क्या हो सकता है, आपके ख्याल में इसके गलत इस्तेमाल क्या हो सकते हैं, आपके ख्याल में इसको आपको कितनी देर यूज़ करना चाहिए। तो इसके कुछ रूल्स, इसके कुछ पॉलिसी बच्चों के साथ मिलके सेट करें और बच्चे जो हैं वो इस बात को समझें। वो बच्चा जो इस बात के वो समझता ही नहीं है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम भी है, मतलब इसका कोई पोटेंशियल मिसयूज़ भी हो सकता है, या इसका ओवर यूज़ होने की वजह से, या लाइफ में हर वक्त इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करने की वजह से मेरी लाइफ में कोई मसला हो सकता है, वो इस बात को समझता ही नहीं है और मैं उसको मना करता रहता हूँ, तो ये बात नहीं बनेगी। तो जो दूसरी बात है वो बच्चे की शऊर के अंदर, बच्चे को ये बात शऊरी तौर पर उसको ये बात समझ आए कि ये चीज़ मुझे इसके अंदर ठीक है, कुछ काम की चीज़ें हैं लेकिन इसके अंदर कुछ पोटेंशियल कह लीजिए प्रॉब्लम्स भी हैं, उनसे अपने आप को बचाते हुए इसका ज़रूरी यूज़ करना है। ये इसको वो समझा कितना अच्छा है, और ये समझा कितना अच्छा है ये लेक्चर्स से हल नहीं होगा, ये कॉन्वर्सेशन से होगा, और ये कॉन्वर्सेशन वन टाइम नहीं होगी बल्कि ये ऑन गोइंग कॉन्वर्सेशन होगी जो कि हमारी ज़िंदगी में चलती रहे। उसमें कभी रिमाइंडर होगा कि भाई आप बताइए आपने क्या सोचा था, किस तरह इसको यूज़ करना है, इस पर बातचीत हो। तो पहली चीज़ मैं ख़ुद एग्जाम्पल बनूँ, दूसरी चीज़ कुछ उसके शऊर को इसमें डेवलप करने के लिए कुछ कॉन्वर्सेशन हो, और अब तीसरी चीज़ ये है कि मैं अपने घर के अंदर कुछ रूल्स या कुछ पॉलिसी बच्चों के साथ मिल के सेट कर लूँ जिसको मैं इम्प्लीमेंट करूँ ख़ुद भी और बच्चे भी। मिसाल के तौर पर हम किस टाइम के बाद हम किसी भी किस्म के गैजेट को यूज़ नहीं करेंगे, यानी सोने से 2 घंटे पहले हमने ये सारी चीज़ें बंद कर देनी है, या हम डाइनिंग टेबल पर बैठ के इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे, या हम किस कौन से मौाक़ों पर इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, या अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम डिस्टेंस कितना रखेंगे, और किस तरह से अगर हम स्क्रीन बड़ी स्क्रीन देख रहे हैं तो किस उसके साथ क्या तरीक़ाकार होगा, या हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम क्या काम करेंगे, क्या काम नहीं करेंगे, किस तरह करेंगे, कुछ चीज़ें आपस में मिल के तय कर लीजिए, वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस कह लें, पॉलिसी कह लें। तो ये 3 चीज़ें हो गई। पहली चीज़ है मैं इसका ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल मॉडल करूँ, ये पहली बात है। दूसरी बात यह कि उसके शऊर में ये बात मौजूद हो कि इसका कुछ अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है, इसके कुछ गलत इस्तेमाल भी हो सकते हैं, इसके ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल करने के लिए उसका शऊर इसकी इजाज़त दे, उसके शऊर इसको बैक करे इसके ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल को, मैं मॉडल करूँ और उसका शऊर इसके साथ खड़ा हो। और तीसरी चीज़ ये कि एक प्रोटेक्टिव अरेंजमेंट जो है वो पॉलिसीज़ और रूल्स रेगुलेशंस की शक्ल में है। रूल्स एंड रेगुलेशंस इनफ नहीं होते, वो एक इजाफी सेफ्टी नेट के तौर पर सर्व करते हैं, मतलब वो उन पर आप रिलाई नहीं कर सकते। असल इनमें जो इन तीनों चीज़ों में बिल तरतीब सबसे पहली बात सबसे ज़्यादा है, मैं दूसरी बात उसके बाद है, तीसरी बात उसके बाद है। तो ये मैं समझता हूँ इस ऑर्डर में इसको अरेंज कीजिए, बाकी अल्लाह से दुआ कीजिए। असल मसला ये नहीं है स्क्रीन टाइम, असल जो इससे भी बुनियादी जो फंडामेंटल कॉन्वर्सेशन है जो हमें करनी चाहिए वो ये कि हमारी जो चॉइसेस हैं हमें अपनी चॉइसेस में सेंसिबल हो जाएं, रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, करेक्ट हो जाएं, ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये फंडामेंटल कॉन्वर्सेशन, ऑन गोइंग कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, ये नॉन थ्रेटनिंग फॉर्म में होनी चाहिए ये कॉन्वर्सेशन। उसे ऐसा ना लगे कि ये मुझे नीचा साबित करने के लिए या मुझे गलत साबित करने के लिए ये फिर ये मौजू निकाल के ले आए हैं ताकि मुझ पर मेरी गलतियाँ निकालें, ऐसा नहीं। एक बहुत ही ओपन डिस्कशन हो कि भाई उसूली तौर पर हमारी लाइफ का एक चैलेंज ये है कि बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, बहुत सारी टेम्पटेशंस होती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उनमें से सही को मैं चूज़ करूं, जिम्मेदारी के साथ चूज़ करूं, ये सेंस हम सब की जिंदा रहे, इम्प्रूव होती रहे, इसके लिए हमें एक ऑन गोइंग रिमाइंडर फ्रेंडली पोलाइट मैनर में कॉन्वर्सेशन चाहिए होती है। तो कॉन्वर्सेशंस के अंदर ये चीज़ रहे। बाज़ औक़ात क्या होता है कि बच्चे जब कोई चीज़ गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो फिर तो हम नोटिस लेते हैं और हम उनको कुछ कहते हैं, तुम फिर लेके बैठ गए, तुमने फिर उठा लिया, तुम फिर यही कर रहे हो, तुम हर वक्त यही कर रहे हो, इससे मेरे और उसके ताल्लुक़ ख़राब होते हैं। तो ताल्लुक़ ख़राब ना होने दें, बल्कि इसको बहुत अच्छे अंदाज से एक ऑन गोइंग कॉन्वर्सेशन हो कि भाई किसी भी चीज़ को कितना इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब देखिए, नमाज कितनी अच्छी, ज़बरदस्त नमाज तो एक ऐसा अमल है जिसमें कोई ख़राबी कोई नुकसान है ही नहीं, नमाज बेहतरीन अमल है। उसके हवाले से भी ये कहा गया कि अगर एक आदमी पूरी रात नमाज पढ़ता है और अपनी दूसरी जिम्मेदारियों से गाफिल होता है और अपने नफ्स से गाफिल होता है और अपनी और चीज़ों से जिम्मेदारियों से गाफिल होता है, तो उसको कहा गया भाई एक मिनट रात का कुछ हिस्सा आप क़याम कीजिए, बाकी टाइम आप अपने दूसरे मामलात कीजिए, आपको पूरी रात नमाज में नहीं खड़े रहिए। उससे रोका गया, इस बात को डिस्कस किया जाए कि रोज़ा कितनी ज़बरदस्त चीज़ है लेकिन सारे साल रोज़ा रखने को मना किया है, आपको कहा भाई छोड़ा भी करें, कुछ रखा भी करें, कुछ छोड़ा करें, मतलब जो नफली रोज़े की बात हो रही है। तो जब बात ये बताइए, अपने बच्चों के साथ डिस्कस कीजिए कि जब नमाज और रोज़े के हवाले से ये बात कही गई कि इसके अंदर आप यानी नमाज भी आपको दूसरी जिम्मेदारियों से एस्केप और दूसरी जिम्मेदारियों से गाफिल होने और दूसरी जिम्मेदारियों से यानी दूसरी जिम्मेदारियों को छोड़ के आप सिर्फ नमाज और रोज़ा कर रहे हैं, तो ये बात पसंदीदा नहीं है। दीन की हिकमत, दीन का फहम इसको इजाज़त नहीं देता इस बात की। तो मोबाइल फ़ोन तो खैर, ये तो इन दोनों का खैर कोई कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल एक अगर उसका कोई अच्छा इस्तेमाल भी मुमकिन है तो भी उसको एक लिमिटेड टाइम ही के लिए होना चाहिए, ये मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ। तो इसके लिए ये शऊर उसका, इसकी जिस बच्चे का शऊर इसकी इजाज़त नहीं देता, बल्कि वो इस वजह से अपने मोबाइल के यूज़ से इसलिए रुकता है क्योंकि आप देख रही हैं, आप घर पे हैं, आपने बहुत अभी डांट पिलाई है तो अब वो इस वजह से रुका हुआ है, तो ये बात बनेगी नहीं। बच्चों पर हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन हुकूमत कर सकते हैं, जब तक यानी जब हम छोटे थे ना तो वालदेन की बच्चों पर हुकूमत का टेन्योर होता था 20 ईयर्स, फिर जब हम बड़े हुए तो वालदेन की अपने औलाद पर हुकूमत का टेन्योर शॉर्ट हो गया, फिर वो होता था 16 ईयर्स। अब बच्चे और बड़े हो गए, इस वक्त जो ईस्टर्न सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर बच्चों पे वालदेन की हुकूमत 13 ईयर्स की है, और वेस्टर्न सोसाइटीज़ में इससे कम है, मतलब 10 ईयर्स 9 ईयर्स की है। मतलब आप 10-12 साल के बाद यू कैन नॉट रूल योर चिल्ड्रन, तो वो सेल्फ पेरेंट्स रूल से सेल्फ रूल में जाने से पहले पहले सेल्फ रूल के लिए सेल्फ रिस्पॉन्सिबल और सेल्फ डिसिप्लिन इनकलकेट करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि पेरेंट्स रूल से जैसे ही उन्हें सेल्फ रूल मिलेगा फिर वो मतलब इससे पहले कि बिल्कुल ही अनरूली बिहेवियर डिमॉन्स्ट्रेट करें, तो इससे बेहतर है कि मतलब हम इसको उनके अंदर ये शऊर इनकलकेट करें। बहुत शुक्रिया
जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं अथर महमूद कनाडा से हूँ। मैं काफी अरसे से मेरी वाइफ और मैं सुनते हैं सलमान साहब को, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको जजा दे। मेरा सवाल है ला युकल्लिफु अल्लाहु नफ्सा और इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कलब की तरफ, कि एक चीज का हमें पता है कि अल्लाह पाक किसी इंसान के ऊपर उतना बोझ नहीं डालते जितना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम जबान से उसका इकरार भी कर लेते हैं और दिल मेरा तस्लीम भी कर लेता है इस चीज को, स्टिल एक मख्फी चीज है जो मुझे जब मैं सिचुएशन में होता हूँ ना, मुझे फिर ओ गॉड ये क्या हो गया मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी बर्दाश्त इतनी नहीं है जितना मेरे ऊपर बोझ डाला गया है। So, वो जो एक चीज अननोन है, मख्फी है, उसको कैसे जाना जाए और उसको कैसे ट्रीट किया जाए।
सुभानअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल, यानी जज़ाकअल्लाहुल खैर अथर साहब, आपने इनका सवाल यही है कि जब मुझे ये बात, मैंने इसको माना भी है और इसको समझा भी है और इसको मेरे दिल ने और जहन ने कबूल भी किया है कि अल्लाह मेरे ऊपर कोई ऐसी मुश्किल नहीं डालता जिसको मैं हैंडल ना कर सकूं, जिसके अंदर एक ऐसी सिचुएशन जिसमें मैं परफॉर्म ना कर सकूं, जिस सिचुएशन को हैंडल करने की बेसिक कैपेबिलिटी मेरे अंदर नहीं है, उस ऐसी सिचुएशन से मुझे एक्सपोज नहीं करता, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब मैं उस सिचुएशन में जाता हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ये लाशऊरी तौर पर इस तरफ सोचने लग जाता हूँ कि नहीं, ये तो सिचुएशन आई कांट डू इट, और मैं ये तो मैं अपनी बजाय इसके कि उस चैलेंज को एक्सेप्ट करूं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लूं कि मैं मुझे इसमें रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है, रिस्पॉन्ड करना है, मैं उसमें छोड़ देता हूं और मुझे लगता है कि नहीं ये तो सिचुएशन, ये तो कुछ मेरे साथ ज्यादती तो नहीं हो रही। तो असल में होता ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो ये समझिए कि हम, ये बहुत नेचुरल बात है, हम सब के अंदर, हम सब इसी तरह डिज़ाइंड हैं कि हम तीन हवालों से हमारे अंदर फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। सबसे बुनियादी बात तो ये कि हम ईमान की एक सतह पर नहीं होते, ईमान हमारा कम, और यानी ईमान की एक सतह पर नहीं होते का मतलब क्या है कि हम अल्लाह को पहचानने की एक हालत में नहीं होते, मतलब हम अल्लाह हमें उतना वाजे तौर पर हर वक्त दिखाई नहीं देता जितना दिखाई देना चाहिए उसूली तौर पर, यह हमारी अपनी जोफे बीनाई है। तो हम तनाजुर की एक हालत में भी नहीं होते, हम अपने इल्म के साथ कमिटमेंट की भी एक जैसी हालत में नहीं होते, हम अपने अकीदे के साथ कमिटमेंट की भी एक जैसी हालत में नहीं होते। तो हमारी अकीदे से कमिटमेंट भी फ्लक्चुएट करती है, हमारा ईमान भी फ्लक्चुएट करता है, हमारा तनाजुर या हमारा पर्सपेक्टिव, हाउ वी लुक एट द वर्ल्ड, ये फ्लक्चुएट करती है, ये चेंज होती है, ये अनवेवरिंग नहीं है बल्कि इसमें चेंज होता रहता है। और उसकी बड़ी वजह जो है, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। इंटरनल वजह ये है कि हम जो सोर्स है, मतलब कुरान और अहले इल्म और अच्छे लोगों की सोहबत की ज़रूरत हमें इस वजह से है ताकि हम अपनी इनर कंडीशंस को उसके साथ अलाइन रख सकें। और इसी तरह एक्सटर्नल सिचुएशंस में भी बाज़ोकात ये होता है, मतलब होता क्या है कि बार बार हम स्विच करते हैं उस मोड ऑफ थिंकिंग और उस वे ऑफ या उस पर्सपेक्टिव की तरफ जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी ने जिसको लिया हुआ होता है। हम यानी एक मुसलसल फोर्स होती है कि मतलब व्हाई डोंट यू लुक एट द वर्ल्ड द वे एवरीवन इज़ लुकिंग। ये एक इनविजिबल प्रेशर है जो आपके ऊपर पड़ता है, मतलब जब आप बाहर निकलते हैं और आप देखते हैं कि सब लोग, मतलब तो आप लाशौरी तौर पर और ये अल्लाह का एक एहसान है वैसे, बाय द वे ये एक चैलेंज भी है और ये अल्लाह का एहसान भी है कि जब मैं सामने वाले से मिलूं तो मैं उसकी निगाह से भी चीज़ों को देखने की कोशिश करूं, जब मैं अपने पड़ोसी से मिलूं तो पड़ोसी की निगाह से चीज़ों को देखूं, जब मैं एक यानी अगर मेरा एक दोस्त है जो कि हिंदू है तो मैं हिंदू की निगाह से चीज़ों को देखने की कोशिश करूं कि वो कैसे चीज़ों को देख रहा है, ताकि मैं उससे रिलेट कर सकूं, ताकि मैं उसके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकूं, ताकि मैं उससे एम्पैथी मेरी मुमकिन हो सके। तो ये हमारी, ये भी अल्लाह ने ही हमारे अंदर पोटेंशियल रखा है। कभी कभी क्या होता है कि लाशऊरी तौर पर जिस तरह वो चीज़ों को देख रहा है, हम ये तमीज़ नहीं कर पाते कि मेरा अपना ओरिजिनल पर्सपेक्टिव या मेरा अपना सही पर्सपेक्टिव है क्या। तो पर्सपेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है ये बड़ी रियाजत से नसीब होती है, इसके लिए इंसान को फिक्र करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए और ये सवाल ज़िंदा रहना चाहिए जो आपने किया। इस बात को अपने आप को समझाना चाहिए कि भाई अगर मेरे ऊपर कोई मुश्किल आई है और मेरे दिल में ये ख्याल आया है कि ये मुश्किल मुझसे हैंडल, यानी इस मुश्किल के अंदर इस शॉक को मैं बियर नहीं कर सकता, इस मुश्किल में मैं गिव अप कर रहा हूँ, तो ये जो गिव अप कर रहा हूँ ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैं यानी मैं चीज़ों को उस तरह नहीं देख रहा, मुझे इस सिचुएशन के अंदर यानी अल्लाह कादर मुतलक है और मुझे इस सिचुएशन के अंदर इस तरह देखना चाहिए कि ठीक है, मैं अल्लाह ने मेरे अंदर ये एबिलिटी रखी है, मैं इसको मैं अपना बेस्ट इसमें ऑफ़र करूं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम ये नहीं कर पाते और हमें अपने साथ थोड़ा सा गुजारना चाहिए वक्त और इसको गौर करना चाहिए और अपने आप को अपनी कमिटमेंट्स को रिवाइव करना चाहिए। तो इंशाल्लाह दुआ करने से और बार बार मांगने से और इस चीज़ को सोचने से इंशाल्लाह ये मुमकिन होगी इंशाल्लाह। तो ये कभी कभी ये होता है कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हम एक बहुत गलत अंदाज से सोचने चले जाते हैं। तो अगर आप किसी सिचुएशन के बारे में आपका ये ख्याल है कि ये आपसे आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं हैंडल हो सकती, तो आप अपने आप को ये बात समझा दीजिए कि ये वसवसे की एक शक्ल है, यानी आपका शऊर इस काबिल हो जाए कि इस स्टेट ऑफ फीलिंग को एक वसवसे से ताबीर करे और वो कहे कि ये वसवसा है, मैं अपने आप को बचाऊँ इस बात से। तो और ये बहरहाल एक अच्छी बात है कि इस तरह का सवाल जहन में आया आपके, अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए, बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मेरा ये सवाल है कि पेरेंट, मदर या फादर अपने स्पाउस की जो अखलाकी कमजोरियां हैं उसके शर से या उसकी तकलीफ से अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, यानी उसकी कोशिश कैसे कर सकते हैं, यानी एक चीज़ जो आप बच्चों की तरबिया में ऐड करते हैं वो शाम होते ही यानी ब्रेन वॉश हो जाती है, और फिर वो वक्त के साथ आप जो बता रहे हैं उसकी बजाय जो बच्चे देख रहे हैं उसका अमल ज़्यादा यानी नोटिस में आता है कि उनके मिजाज में तलखी आ रही है, उनके मिजाज में चीखो पुकार है, और उनके मिजाज में ब्लेम देना दूसरे को और डिसओन करना चीज़ों को, तो ये चीज़ ज़्यादा प्रिवेल करती है। तो इस चीज़ को उसको कैसे समझा जाए, उसको कैसे डील किया जाए ताकि बच्चों के अंदर इखलाकी कमी पैदा ना हो और उनके अंदर जो है वो अपने किसी भी पेरेंट के लिए नफ़रत पैदा ना हो और वो अपनी फीलिंग्स को छुपाएं नहीं, तो प्लीज़ इसमें आप अगर रहनुमाई करें तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकल्लाह।
बहुत अच्छा सवाल किया, अल्लाह आपको अजर दे। और आपका सवाल ये है कि अपने स्पाउस की जो अखलाकी कमज़ोरियाँ हैं या जो अखलाकी मसाइल हैं उससे पैदा होने वाले नुकसान से अपने आप को और अपने बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है। इसमें दो बातें हमें समझनी होंगी और ये बहुत अहम सवाल है। असल में बात यह है कि हमारी मुस्लिम माशरों में तरबिया नहीं हुई, हम सब की तरबिया नहीं हुई, तो जब हम तरबिया की कमी और तरबिया के फ़ुकदान की वजह से अब वही लड़की या लड़का बड़े होकर शादी हो गई, यानी हम हमारे जो भी रोल्स हैं उनको कितनी खूबसूरती से और ज़िम्मेदारी से हमें निभाना है ये काम तरबिया करती है, तो तरबिया चूँकि नहीं हुई तो लिहाजा जब उसके बाद हम बड़े होते हैं और हम कोई ज़िम्मेदारी हमें मिलती है तो बहरहाल हमसे बहुत सारी कमज़ोरियाँ और बहुत सी गलतियाँ और बहुत सी नादानियाँ सरजद होती हैं। तो ये बहरहाल ये सिचुएशन, ये सवाल ऐसा है जो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों के दिलों में शायद ये सवाल हो जो आपने किया। मैं इसमें दो बातें करूँगा। पहली बात तो ये कि ज़ालिम यानी ज़ालिम को ज़ुल्म से रोकना, ये भी यानी ज़ालिम की मदद करना जो है ये भी हमारा जो मज़हबी शऊर है हमें ये बताता है कि ज़ालिम की मदद की जाए। ज़ालिम की मदद का तरीका ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ालिम की मदद करो। ज़ालिम की मदद कैसे करें, तो उसे ज़ुल्म से रोको। तो ज़ुल्म से कैसे रोकें, यानी उसे बहुत पोलाइट मैनर में मोहब्बत के साथ इस बात को बताया जाए कि भाई आपकी इस अमल से मुझे तकलीफ़ होती है। ये पहला बात है, यानी ये मैं जो मेरा जवाब है उसके दो हिस्से हैं। पहला पार्ट ये है कि हम यानी मैं इसके बारे में ये कहूँ कि आप ना एक मोटो ये बनाएं कि ना किसी के साथ ज़्यादती करें ना अपने साथ ज़्यादती होने दें, बल्कि एक और मोटो ये बनाएं कि ना आसानी से बुरा माने और ना किसी को बुरा मानने दें। ये बहुत इन दोनों बातों को बल्कि लिख लें, यानी ना किसी के साथ ज़्यादती करें ना अपने साथ ज़्यादती होने दें, ना किसी की बात का बुरा माने ना किसी को बुरा मानने दें। अब ये बात ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं होगी बल्कि ये बात पोलाइटली और ये बात ताल्लुक़ की खूबसूरती से होगी। तो पहली बात तो ये है कि आप उनको उनके लिए दुआ भी कीजिए, उनको बहुत पोलाइट मैनर में जब वो अच्छे मूड में हों तो इस बात का एहसास दिलाइए कि भाई आपकी इस बात से कभी कभी हमें तकलीफ़ होती है थोड़ा सा, और इस बात का एहसास दिलाते हुए इस बात को लाजमी पॉइंट आउट कीजिए कि हमें अंदाज़ा है कि आप ख़ुद ऐसा चाहते नहीं हैं, आप ऐसा या आपकी इंटेंशन नहीं है, या आप इरादी तौर पे नहीं करते, या आप इंटेंशनली नहीं करते, ये आपसे हो जाता है। हमें भी अंदाज़ा है कि ये आप खुद नहीं करते, जानबूझ के नहीं करते, इंटेंशनली नहीं करते, ये आपसे हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपकी इस बात से कभी कभी हमें तकलीफ़ होती है, हम हर्ट हो जाते हैं, तो आप जब ये वाली बात करते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है। ये बात बहुत पोलाइट मैनर में, बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत ही अच्छी फिज़ा में, ख़ास तौर पर जब उनका मूड अच्छा हो, तो ये बात कन्वे करना ज़रूरी है। ये मैं इस बात के बारे में कहता हूँ, ये भी एक तकाज़ाए दीनिया है कि हम उनको ये बात बताएं, अपने स्पाउस को बताएं, इवन अपने पेरेंट को भी बता सकते हैं कि हज़रत आपकी इस बात से, पेरेंट को चलें आप छोड़ दें लेकिन आप बहन भाइयों को बता सकते हैं, आप अपने स्पाउस को बता सकते हैं कि भैया आपकी इस बात से मुझे ये बात मुझे महसूस हुई। तो और तमाम यानी बहुत रिस्पेक्टफुली बताना है। देखें इसमें एक बात जो हमें समझनी चाहिए, यानी जिस इंसान से हम इख्तलाफ कर रहे हैं या जिस इंसान की किसी बात को हम फील कर रहे हैं, जब उस इंसान को ये यकीन दिलाने में हम कामयाब हो जाते हैं कि हमें तुमसे बेइंतहा मोहब्बत है और हम तुमसे बेइंतहा मुखलिस हैं, यानी उस आदमी کے ساتھ بڑا بڑی بھلائی ہو جاتی ہے. یعنی اس معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن سے جن کو میری بات سے بہت اختلاف ہو. مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ انہیں میری بات سے اختلاف ہے یا نہیں ہے, لیکن مجھے اس بات کی فکر ہے کہ انہیں میری محبت کا یقین ہے یا نہیں ہے. یعنی میری محبت کا یقین آ جائے انہیں, میری بات سے اتفاق کر لیں. اس سے زیادہ اہم گول یہ ہونا چاہیے کہ میری محبت اور میرے اعتماد اور میرے اخلاص کا یقین آ جائے, اور وہ اس کو یعنی اور اس محبت آمیز لہجے میں میں ان کو یہ بات منتقل کر پاؤں کہ جناب آپ کی اس بات سے مجھے تکلیف ہوتی ہے, اور مجھے یہ اندازہ ہے کہ یہ آپ جان بوجھ کے نہیں کر رہے, مجھے یہ اندازہ ہے کہ آپ چاہتے نہیں ہیں, یہ آپ سے انویلنگلی ہوتا ہے, ان نوئنگلی ہوتا ہے, لاشعوری طور پر ہوتا ہے, اور آپ خود آپ اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو ریگریٹ ہوتا ہے, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ خود ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جب آپ سے یہ بات ہوتی ہے. یہ وہ کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے, اور یہ کام بہت وزڈم چاہتا ہے. یعنی اس کام کو کرنے سے پہلے ہمیں دعا کرنی چاہیے, ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, اپنے لیے دعا کرنی چاہیے. تو اپنے اسپاؤس سے سچی محبت کا ایک انڈیکیٹر یہ ہے کہ جنت میں اس کی ہمراہی کی خواہش ہمارے دل میں پیدا ہونے لگے. یہ بہت زبردست مطلب کہہ لیجئے کہ ایک لیول ہے بانڈنگ کا. اللہ کرے کہ ہم یعنی اور لیکن ہم ان سے کنوے کریں, یعنی میں نہ کسی کے ساتھ زیادتی کریں, نہ اپنے ساتھ زیادتی ہونے دیں, نہ کسی کی بات کا برا مانیں, نہ اس کو برا ماننے دیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مینٹین کرنا. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات کی طرف میں آتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں. یہ تو وہ کام ہے جو ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے, لیکن اپنے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ کیا کام کیا جائے ایسی سچویشن میں جب فادر یا ہسبینڈ جو ہے ان کے اخلاقی مسائل ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہیں, ہمیں ہرٹ کر رہے ہیں, ہماری اپنی سینس آف ہماری جو سیلف ریسپیکٹ ہے اس کے لیے مضر ہیں, تو ہمیں کیا جائے. سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, جو آپ کو گول کے طور پہ اپنا بنانا ہوگا, وہ یہ ہے جس کو میں ایک پہلے میں اصولی بات بیان کر دوں کہ میں ایک بہت ہی اصول کی سطح پر ایک بات میں کیا کہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کسی مظلوم کی سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ اس کو احساس مظلومیت سے باہر نکال لیا جائے. یعنی کسی مظلوم کی سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ اس کو احساس مظلومیت سے باہر نکالنے میں آپ کامیاب ہو جائیں. یعنی احساس مظلومیت کیا ہے کہ بھائی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں ایک بات اور سمجھ لیں, اگر ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو اس کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. اور اگر ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی, تو اس کے ساتھ ہو رہی ہے زیادتی لیکن کچھ کم ہو رہی ہے. اور اگر ایک ایڈلٹ ہے جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لیکن وہ یہ محسوس نہیں کرتا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو الحمدللہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی. یعنی کم از کم وہ اپنے ساتھ زیادتی ہونے نہیں دے رہا, کوئی دوسرا تو کر رہا ہے زیادتی لیکن میں کم از کم اپنے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے رہا. یہ جو بات ہے یعنی میں کسی سچویشن کو کیسے دیکھوں اور میں اپنے آپ کو احساس مظلومیت سے باہر کیسے نکالوں, یعنی احساس مظلومیت کا مطلب یہ کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے, میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, میں اس احساس سے اپنے آپ کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں, یہ میرا گول ہونا چاہیے. ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ ہم ظالم کا ہاتھ پکڑ کے موڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو احساس مظلومیت سے باہر نکالنے کی کوشش نہیں کرتے. مطلب ظالم کا ہاتھ پکڑ لینا ایک دوسری بات ہے, لیکن اپنے آپ کو احساس مظلومیت سے باہر نکالنا ایک دوسری بات ہے. اب اس سچویشن کو دیکھنا کیسے ہوگا, اب میں اس کی اور تھوڑی سی ڈیپتھ میں اور ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا. دیکھیے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی جس طرح کی بھی سچویشن ہے, یہ اس کو اگر ہم اپنے ایمانی تناظر میں ڈیفائن کریں تو ہم اسے کہیں گے قدر اللہ, اللہ کی مرضی, اللہ نے یہ سچویشن رکھی. یعنی مجھے خوش گفتاری اور خوش کلامی کی نزاکت, اہمیت اور ضرورت اور اس کے غیر معمولی احساس کا قائل یا اس یعنی اس کی جو ویلیو ہے ایک سوفسٹیکیٹڈ اور ایک بہت ہی ایک اچھے خوبصورت رویے کی, یہ میرے اندر بہت اچھی طرح میں اس کی قدردانی میرے اندر پیدا ہو, میں اس میرے اندر ایک یعنی میں اس سچویشن کو ایسے دیکھوں کہ ایک ایسی سچویشن پیدا ہوئی ہے جس جو میرے اندر اس کوالٹی کو اور اس ٹریٹ کو اور اس کی ضرورت کو پہچاننے اور سمجھنے کا موقع مجھے دے رہی ہے. یعنی میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جو مجھ سے اپنی لائف کے معاملات شیئر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سر ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, اور میں ان کے معاملات سنتا ہوں, ان کی پوری وہ اپنی لائف کی ٹائم لائن شیئر کرتے ہیں اور اس میں مجھے نظر آتا ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, لوگوں نے بہت یا کسی بندے نے ان کے ساتھ بڑا خراب رویہ اختیار کیا یا بہت غلط ان کا ابیوز کیا انہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس پوری چیز میں جو سب سے بڑا لیسن نکالا جا سکتا ہے ان کی نگاہ اس پہ جائے, یعنی انسانی نفسیات کے اوپر جو ماسٹری اللہ نے ان کو اس پورے ایکسپیرینس کے نتیجے میں عطا کی ہے وہ اس کو ریئلائز کریں, وہ یہ دیکھیں کہ اس سچویشن سے اللہ آپ کو کیا ٹیچ کرنا چاہ رہا ہے, اس سچویشن سے آپ کیا لیسنس ڈرا کر سکتے ہیں, اس سچویشن سے آپ کے اندر کیا اسٹرینتھ پیدا ہو سکتی ہے, اس چیلنج کو مسلسل ہینڈل کر سکنے کے نتیجے میں آپ کا ٹیمپرمنٹ اور آپ کی اپنے یعنی آپ نے کو یعنی کسی بھی سچویشن کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ میں میری میکنگ یا میری اپبرنگنگ یا میری ٹریننگ کے لیے میں اسے ایک کریکلم کے طور پر دیکھوں. ٹھیک ہے وہ ایک تھوڑا فوجی کریکلم ہے جس کے اندر مجھے ایک بڑی بٹر سچویشن مل رہی ہے, لیکن ٹھیک ہے اگر اللہ نے اس سچویشن کو میرے لیے طے کیا ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا اس کو میں کیسے اس میں میں کیسے پرفارم کروں. تو اپنے آپ کو احساس مظلومیت سے نکالنا بڑا ضروری ہے اور یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس سچویشن میں ٹھیک ہے یہ تو ان کا عمل ہے وہ کیا کر رہے ہیں. ایک اور چیز جو اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے وہ یہ کہ ان کا کیا عمل ہے وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ان کا عمل ہے لیکن میں کیا کر رہا ہوں یہ میرا عمل ہے. میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنے عمل کو دیکھوں, ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے عمل کو دیکھیں. ایک چیز اور بھی ہے کہ جب ہم کسی کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اس طرح کا وہ اس طرح کا ڈیزائن ہو چکا ہے کہ وہ اس طرح کی چیز کرتا ہے, تو پھر مجھے بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ مجھے فلاں یعنی ایسا بہت دفعہ ہوا کہ میرے پاس کوئی صاحب آئے انہوں نے اپنی وائف کی کوئی پرابلم بتایا یا کوئی خاتون آئی انہوں نے اپنے ہسبینڈ کا کوئی پرابلم بتایا اور انہوں نے بتایا کہ مجھے ان کی فلاں چیز سے بڑی تکلیف ہوتی ہے, ان کے اس انداز یا اس رویے سے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان سے شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا, تو انہوں نے بتایا کہ 10 سال ہو گئے, 9 سال ہو گئے. اور پھر میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو تکلیف ہے یہ کتنے دن سے ہے, مطلب کب سے یہ مسئلہ ان کے اندر کب سے ہے. تو بہت سے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ مسئلہ تو پہلے دن سے ہے لیکن میں نے محسوس 2 سال سے کرنا شروع کیا ہے. اور بہت سے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ نہیں یہ پہلے دن سے ہی مجھے محسوس ہو رہا ہے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ مسئلہ پچھلے 10 سال سے ہے, اب آپ کے لیے یہ آؤٹ آف ایکسپیکٹیشن بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے. آپ مطلب آپ کی ایک ٹریننگ ہو گئی نا کہ واٹ ناٹ ٹو ایکسپیکٹ اینڈ واٹ ٹو ایکسپیکٹ فرام ہم, تو یہ ٹریننگ اللہ نے آپ کی کر دی ہے, یہ اچھی خاصی ٹریننگ ہو گئی ہے. تو بس اب آپ اپنی ایکسپیکٹیشنس کو اس طرح ریسیٹ کر لیں, اور اگر ایسا ہے کہ پہلے محسوس نہیں ہوتا تھا تو اب محسوس ہوتا ہے, تو پھر یہ سوچیں کہ پہلے کیوں نہیں محسوس ہوتا تھا اور اب کیوں محسوس ہو رہا ہے. تو بھائی محسوس کرنا کیسے چھوڑا جا سکتا ہے, اس کو سیکھیں. یہ بھی بڑی زبردست لرننگ کی بات ہے کہ واٹ ناٹ ٹو فیل اباؤٹ, یعنی کیا چیز میں محسوس نہیں کروں. میں مطلب سینسیٹیو ہونا اچھی بات ہے, لیکن ایک بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات کوئی سچویشن ہمیں یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اس سچویشن میں کسی معاملے کو کتنا فیل کرنا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, کبھی کبھی فیل ہم اپنے اسٹینڈرڈس کے مطابق کرتے ہیں, کبھی کبھی سچویشن ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ اس سچویشن میں یہ سچویشن ہے, اس طرح کے ابا جان ہیں یا اس طرح کے سسر صاحب ہیں یا اس طرح کی ساس ہیں یا اس طرح کی بیوی یا شوہر ہے, تو اب ان کے ساتھ معاملے میں مجھے میرا جو فیلنگ کا سینسر ہے وہ فیلنگ کا سینسر میں کیسے ریسیٹ کروں کہ مجھے کتنا کس چیز کو فیل کرنا ہے کس چیز کو فیل نہیں کرنا. اب مجھے مطلب اگر ایک چیز پچھلے 10 سال سے بودر کر رہی ہے تو اصولی طور پر اسے بودر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ مسلسل 10 سال سے بودر کر رہی ہے. اب تو مجھے یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ ہاؤ ناٹ ٹو گیٹ بودرڈ بائی دس کہہ لیجیے پرابلم, یعنی یہ جو چیز ہے یہ مجھے اپنے آپ کے اوپر کام کرنا ہے اور ان کے لیے دعا کرنی ہے. اور جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ان کو ضرور پولائٹ مینر میں ضرور بتائیے. اور اب میں اسپیسیفکلی بچوں کے حوالے سے بھی ایک بات بتا دوں, جب بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے اور اماں اور ابا میں سے کوئی زیادتی کرتا ہے, کبھی اماں کر دیتی ہیں کبھی ابا کر دیتے ہیں, تو بچوں کا ایک نیچرل بچوں کے اندر ایک رسپانس یہ ہوتا ہے کہ اگر ابا نے کوئی بات زیادتی کی ہے تو وہ اماں کی شکل کو دیکھتے ہیں. اور بچے اتنا ڈیپلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس سے, اسپاؤسز ایک دوسرے سے اتنا ڈیپلی کنیکٹڈ نہیں ہوتے جتنا بچے اپنے پیرنٹس سے ڈیپلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں, خاص طور پہ ماں سے. کیونکہ جب بچے اس دنیا میں آتے ہیں تو وہ پہلے دن سے اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ وجود نہیں سمجھتے, وہ انیشیلی اپنے آپ کو آپ کی ایکسٹینشن سمجھتے ہیں. جب آپ کا بچہ پیدا ہوا تھا تو وہ اپنے آپ کو آپ کی ایکسٹینشن سمجھتا تھا, کہ وہ اپنے آپ کو ایک اٹانومس بینگ نہیں سمجھ رہا تھا شروع میں, یہ گریجولی وہ اس قابل ہوا. آپ کے ساتھ جتنا ڈیپلی کنیکٹڈ ہے, جب ابا جان نے کچھ کہا تو آپ کے دل میں جو بات آئی وہ اس کو فیل ہوگی, आपके चेहरे पे जो बात आई और आपकी बॉडी लैंग्वेज में जो बात आई वो तो बहुत ही ज़्यादा फील होगी, और जो आपकी ज़बान से भी इंडोर्स हो गई वो तो बस गया, मतलब वो तो। अब इसमें जो बहुत अहम बात है कि मैं अपने बच्चे को एहसास मज़लूमियत से कैसे निकालूं, यानी ठीक है उन्होंने एक बात कही, अब यानी मैं गालिब का एक शेर मुझे याद आ रहा है, कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियाँ खा के बेमज़ा ना हुआ। यानी एक स्टेट है बहरहाल, आप बच्चा जो है वो उसको इस पूरी सिचुएशन से इम्यून करने में, इस पूरी सिचुएशन को अपना कॉन्फिडेंस और सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ लूज़ किए बगैर इस पूरी सिचुएशन में परफॉर्म करने के काबिल बनाने के लिए वो आपको देखेगा, आपकी तरफ देखेगा, आपको देख के वो परफॉर्म करेगा। जब हम छोटे थे, मुझे एक और चीज़ अपने बचपन की याद आ गई, रेसलिंग आया करती थी, और एक पता नहीं वो कहाँ है वो आदमी, लेकिन हमने एक ज़माने में देखी थी, अंडरटेकर होता था, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखा है अंडरटेकर। तो अंडरटेकर जब रेसलिंग करता था तो उसका एक कोच या उसका कोई मेंटोर या कोई होता था जो रिंग से बाहर खड़ा होता था, और वो उसको मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें करता था, उसको ताव दिलाता था, उसको गुस्सा दिलाता था, उसको इस तरह की चीज़ करता था। तो वो उसको वो नहीं बताता था कि वो फाइटिंग का एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन वो जिस तरह का एक्साइटमेंट, जॉय, मूड, उसकी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस, अंडरटेकर उसको देखता रहता था, उसको देख के वो अपने टारगेट को हिट करता था। मतलब वो बड़ी अजीब सिचुएशन थी, मतलब ये मैंने बहुत अपनी जिंदगी, पता नहीं आप में से किसी ने देखा वो, या वो रेसलिंग बहुत पुरानी वक्तों की बात है ये, अब पता नहीं, अब तो मैं कभी देखी नहीं मैंने उसके बाद, ये पुराने ज़माने की बातें बता रहा हूँ। तो ये जो जब बच्चों के साथ कोई चीज़ होती है, देखिए मैं जब एक बड़े भाई ने छोटे भाई को एक थप्पड़ मारा है तो छोटा भाई अम्मा जान की तरफ देखेगा, और अम्मा जान के दिल में अगर ये बात है कि बड़े भाई ने तो बहुत जुल्म किया, हाय बेचारा मेरे छोटे बच्चे को तो इसने मार ही दिया, बिल्कुल ये कितना छोटा सा, तो आपके दिल में जो बात है वो उसकी जो एहसास मज़लूमियत है उसको नर्चर करने की रीज़न बनेगा। मेरी बात समझ आ रही है? आपकी पूरी अप्रोच ये हो कि मेरे किसी भी इंटरनल स्टेट और एक्सटर्नल रिस्पांस के नतीजे में इसका एहसास मज़लूमियत नर्चर ना करे, ये मेरा गोल होना चाहिए। मैं अगर बिल्कुल बॉटम लाइन इससे अगर मैं निकाल के दिखाऊँ ना, ये मुझे देखेगा, बहन ने इसके साथ कुछ किया, बहन ने इसकी चीज़ें छीन ली, ये अम्मा को देख रहा, अम्मा आपके दिल में ये बात है, ठीक, आपने उसकी पूरी बात सुने, अच्छा क्या हुआ, उस तुम्हारी चीज़ छीन ली, अच्छा ठीक है, चले मिल जाएगी इंशाल्लाह, देखते हैं, आपको आपको फील हो रहा है, आप उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें, अच्छा आपको फील हुआ, आपकी कोई चीज़ ले ली, अच्छा अगर वो आपको रिपोर्ट कर रहा है आप उसकी बात सुने, आप उसे गले लगाएं, आप अपने बच्चे को प्यार करें, जिसकी कोई चीज़ छीनी आप आए मेरे पास आओ मैं तुम्हें गले लगा लूँ, आप उसे गले लगा लें, प्यार करें, तुम्हारी चीज़ तोड़ दी उसने, अच्छा ओहो तुम्हारी चीज़ तोड़ दी, ठीक है। लेकिन ये वाली बात जो अब मैं जो बात कह रहा हूँ, उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना कुछ और बात है, लेकिन ये समझना कि हाय मेरा बच्चा मजलूम है, इसके ऊपर जुल्म हो रहा है, ये बेचारा है, ये विक्टम है, ये समझने, यानी ये बहुत फाइन लाइन है इस पूरी बात में। यानी एक बात ये है कि ठीक है आपकी कोई चीज़ उन्होंने ले ली, तोड़ दी, आपका लंच उन्होंने खा लिया, आपका केक उन्होंने खा लिया, आपको उन्होंने, आपका काम उन्होंने ख़राब कर दिया, आपको उन्होंने पुश किया, आपको उन्होंने मारा, ओके आई सी, आए मेरे साथ गले लग जाएं, अच्छा आपको भी फील हुआ, अच्छा आपको तकलीफ हुई, ओके अच्छा, आप उसकी तकलीफ को फील भी करें, लेकिन उसको बेचारा नहीं समझें, उसको मजलूम नहीं समझें। ये ठीक है कि वो मजलूम हुआ है, लेकिन आप उसको एहसास मजलूमियत से निकालने के लिए, क्योंकि वो जो मेरी इनर स्टेट है, बच्चा अपनी माँ के, यानी हम जो इस वक्त बैठे हुए हैं तो हम एक दूसरे की शक्ल को देख के अंदाज़ा कर रहे हैं कि वो कैसा महसूस कर रहा है, या हम एक दूसरे के कलाम को सुन के अंदाज़ा कर रहे हैं कि वो मेरे बारे में क्या महसूस कर रहा है, लेकिन हमें उसके दिल के अंदर क्या है और उसकी बॉडी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने की एबिलिटी हमारी नहीं है, इसलिए कि हम उनकी औलाद नहीं है। लेकिन जो हमारे वालदैन होते हैं, खासतौर पर जो माँ है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना और उसके इनर स्टेट और उसकी इनर फीलिंग्स को सेंस कर लेना, ये बच्चे के लिए कोई मसला ही नहीं है। और ये 7 साल का बच्चा भी कर लेता है, 5 साल का बच्चा भी कर लेता है। तो जब अब्बा जान अपने बच्चे को सुनाते हैं ना, कुछ करते हैं कोई हरकत, हाँ भाई इधर आओ, ये वो जो भी अपनी हरकत करते हैं, पहली बात तो ये मुस्लिम उम्मा तरबियत से गाफिल रही है और कई 100 साल से गाफिल रही है, तो इसका अलाउंस हमें मतलब देना चाहिए। और लेकिन अब ये समझना चाहिए कि ठीक है, अब इंशाल्लाह ये अल्लाह हमें ग्रेटर ग्लोबल तरबिया मूवमेंट के अंदर अपना सॉलिड कॉन्ट्रीब्यूशन डालने वाला बनाए, और वो सॉलिड कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि अपने शौहर को मनाने में कामयाब हो जाएँ, अपने बच्चे का दिल जीतने में कामयाब हो जाएं, अपने शौहर का दिल जीतने में कामयाब हो जाएं, अपनी बीवी का दिल जीतने में कामयाब हो जाएं। यानी मैं समझता हूं कि अपनी बीवी का दिल जीतना ग्रेटर ग्लोबल तरबिया मूवमेंट में एक बहुत सॉलिड कंट्रीब्यूशन है, अपने बच्चों को कहानियां सुनाना ग्रेटर ग्लोबल तरबिया मूवमेंट में एक बहुत सॉलिड कंट्रीब्यूशन है। तो जब वो अब्बा जान अपने बच्चे को कुछ करें ना, कोई एब्यूज जो भी करें, गलत करें सही करें, तो बहुत विजडम चाहिए इसको किस तरह हैंडल किया जाए। बच्चा आता है ठीक है, गले लगा लिया, लेकिन आप ठीक है ये तो करते ही ऐसा है, क्यों सोच रहे हो ये, मतलब इसके अंदर बहुत केयरफुल होना है अपने रिस्पॉन्स में कि मैं ये कह क्या रहा हूँ, मैं ये बोल क्या रहा हूँ, मैं क्या उसको इंडोर्स कर रहा हूँ, क्या इसके अंदर जो फीलिंग्स या जो जो एक जमा हो रही हैं, क्या उसमें मैं भी एक फैक्टर हूँ कि मैं कैटलिस्ट तो नहीं हूँ इसमें, ये मुझे देखने की ज़रूरत है। और फिर एक बात मैं आपसे और अर्ज करूँ कि बहुत से, अब मैं एक तीसरी बात भी, मैंने दो बातें अब तक कर दी, मैंने पहली बात तो ये की कि जालिम की मदद कैसे की जाए, मैंने दूसरी बात ये की कि अपनी और अपने बच्चे के साथ क्या किया जाए और उसको एहसास मजलूमियत से बाहर निकाला जाए, और इसे कदर अल्लाह वाली जो बात मैंने की वो भी इसके अंदर शामिल थी। अब मैं एक तीसरी बात ये कर रहा हूँ कि एक बालिग आदमी 40-50 साल का या 30 साल का बड़ा आदमी, कोई लड़का है, कोई आदमी है या कोई औरत है, वो बदमिजाजी का मुजाहरा क्यों करती है? बदमिजाजी और किरदार की खराबी दो अलग चीज़ें हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है, कुछ लोग ज़बान के, लफ्ज़ों के, चॉइस ऑफ वर्ड्स के, और अपनी टोनोलॉजी में ख़राब होते हैं, वो टोनोलॉजी में ख़राब हैं, अपने इंटोनेशंस में, यानी उनकी टोन ठीक नहीं है, उनकी चॉइस ऑफ वर्ड्स ठीक नहीं है, लेकिन उनकी इंटेंशंस ठीक हैं, उनके दिल में मोहब्बत, यानी कुरान में एक बात बयान हुई है कि दिल पे गिलाफ, यानी गिलाफ भी चढ़ जाते हैं ना, दिल के ऊपर भी एक कवरिंग्स आ जाती हैं, तो जब कवरिंग्स आती हैं तो दिल के अंदर कोई अच्छी चीज़ जो है वो कहीं छुप जाती है, तो जो मोहब्बत है, जो इखलास है, वो कवर्ड हो जाती है किस चीज़ से, हमारी टोन्स, हमारी चॉइस ऑफ वर्ड्स। तो ये बहुत से लोगों के साथ होता है, हमारे साथ भी हो जाता है, तो अपने ऊपर निगाह रखनी है, अपने आप को। ये चीज़ कैसे ठीक होती है? ये चीज़ ऐसे ठीक होती है कि एक जब किसी इंसान से इतना गहरा ताल्लुक़ हो जाए कि बाहिमी तस्किया आसान होने लगे, फीडबैक शेयरिंग आसान होने लगे, मैं तुम्हें फ़ीडबैक दूँ, तुम मुझे फ़ीडबैक दो, तुम मुझे बताओ मैं कैसे चल रहा हूँ, मैं तुम्हें बताऊँ तुम कैसी चल रही हो, ये वाली जब लेवल ऑफ रिलेशनशिप आ जाता है तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात होती है। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि ताल्लुक़ जो है उसमें शिफा होती है, अच्छे इंसान से ताल्लुक़ में शिफा होती है। तो बस आप दुआ कीजिए उनके लिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, उनको कायल करने से ज़्यादा उनका दिल जीतने की कोशिश कीजिए, और इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। यानी उनको भी मोहब्बत और ताल्लुक़ की ज़रूरत है। कभी कभी रिलेशनशिप स्टार्व्ड आदमी के रवैये ख़राब होते हैं, तो हमें देखना है कि ये जो साहब हैं ये ख़ुद रिलेशनशिप स्टार्व्ड तो नहीं है। बहरहाल मैं बहुत, अल्लाह करे कि इन बातों की कोई सेंस बनी हो और ये बात समझ आई हो, मैं इसको यहाँ रोकता हूँ। ठीक है, अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।